ओम शांति। आज भट्टी में बहुत सुंदर एक इंटरव्यू होने जा रहा है, जबकि ऐसा इंटरव्यू भट्टियों में फर्स्ट टाइम है। और हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी और आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई हमारे बीच खास आप सबसे मिलने आए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। डॉक्टर बनारसी तो खास अहमदाबाद से आए हैं, निर्वैर भाई को छोड़कर आप सबसे मिलने हैं। और इनके तो बहुत काल का अनुभव है, दादियों के साथ, दीदियों के साथ और बाप दादा के साथ तो हैं ही हैं, और उनके व्यक्तिगत अनुभव ज्ञान में चलते एज अ प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर के हैसियत से भी काफ़ी इनके अनुभव हैं, और एक स्पिरिचुअल पर्सन के नाते से भी काफ़ी इनके अनुभव हैं। और इन दोनों को इंटरव्यू करेंगे हमारे गोविंद भाई। गोविंद भाई आप सब जानते हैं, आप में से बहुत ही अच्छे से गोविंद भाई को जानते हैं। आप ज्ञान सरोवर निवासी हैं, यहाँ के मल्टीमीडिया डिपार्टमेंट आप संभालते हैं और ये फ्री लॉन्सर सेवाधारी हैं। यहाँ किसी को भी, तीनों कॉम्प्लेक्स में किसी को भी सेवा की दरकार है, वहाँ पर कोई जहाँ ना जाए वहाँ पर गोविंद भाई जाए। तो सेवा के इनको इतना लगन है और हम तीनों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। और देखेंगे कि इन दोनों से क्या निकलवाते हैं गोविंद भाई। तो थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम ज्ञान सरोवर निवासियों की ओर से सतीश भाई और बनारसी भाई को बहुत बहुत, और मैं तो दीदी निर्मला की तरफ से भी आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू।
थैंक यू मंजू बहन जी। ये अवसर मंजू बहन जी के द्वारा मिला है, जिम्मेवारी वो देते हैं, बाबा शक्ति भरता है, क्योंकि दो दो महान विभूतियां जिनको ब्राह्मण परिवार ही दिल से प्यार नहीं करता बल्कि विश्व की आत्माएं उन्हें सम्मान देती हैं इनके अपने कर्तव्यों के कारण। और आज बाप दादा की नजर भी शायद मेडिटेशन हॉल में और आप सब भट्टी वालों के ऊपर थी, इसलिए बाबा ने किन्हें याद किया, परोपकारी आत्माएं, है ना, सर्व आत्माओं के दिलों की पुकार सुनने वाली परोपकारी आत्माएं। व्यक्ति कष्ट में भगवान के साथ साथ फिर किसे पुकारता है, डॉक्टर को, क्योंकि भगवान दर्द से छुटकारा देता है, लेकिन किनके द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा। तो हम सबके बीच दो दो डॉक्टर जिन्हें नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं, भगवान के बाद स्थान डॉक्टर का होता। और एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें व्यक्ति अपना संपूर्ण सरेंडर कर देता, डॉक्टर ही ऐसा है, भगवान के बाद डॉक्टर को सौंप देते। हम भी किसी अपने रिश्तेदार को ले जाते या परिवार के सदस्य को तो सौंप देते, भाई अब आप संभालो। तो ऐसा सरेंडर केवल डॉक्टर के ऊपर। और फिर हमारे बीच डॉक्टर बनारसी भाई जी और डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, जो डबल डॉक्टर हैं, जो एक राजयोग के भी अभ्यासी, मन और आत्मा की बीमारी भी दूर करने वाले और तन के भी, तो ऐसे डबल डॉक्टर्स का फिर से एक बार, है ना, ये सौभाग्य हमें मिला आपसे अनुभव के लाभ लेने का। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर बनारसी भाई जी से शुरू करता हूँ। भाई साहब का उमंग गुस्सा, मैं समझता हूँ जो जुड़े हुए हैं वो ज्यादा जानते हैं, जैसे उमंग गुस्सा की पराकाष्ठा कहते हैं ना, जैसे भाई साहब को देखते हैं तो पैर जमीन पर नहीं है ऐसा फील होता। भाई साहब इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो भगिनी संस्था है राजयोग एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन, उसके मेडिकल विंग के आप सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, शांतिवन परिसर में जो हमारा हेल्थ केयर सेंटर है ना, एवर हेल्दी हॉस्पिटल, उसके आप डायरेक्टर हैं, आप ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ट्रस्टी भी हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं। भाई साहब से मैं ओम शांति मीडिया से जुड़ा हूं, तो भाई साहब के द्वारा जो पूरे भारत में अभियान चलाया गया था, मेरा भारत स्वस्थ भारत, जिसने क्रांतिकारी सेवा की, मैं वो पूरा एक एक गांव का पूरे डाटा, कहां कहां गांव में कौन कौन से कितने प्रोग्राम्स हुए, पूरे भारत में स्वास्थ्य जगत में मैं समझता हूँ ऐसा क्रांतिकारी कार्य पहले नहीं हुआ होगा ऐसा मैं समझता हूँ। ये भाई साहब के ही उमंग उत्साह हिम्मत और पूरा कैसे भारत के सेंटर्स जुड़ गए और पूरा हमने एक संस्मरण बनाया था ओम शांति मीडिया का, भाई साहब को याद होगा या नहीं, उसमें दिन रात मेहनत करके गांव-गांव की रिपोर्ट डाली थी उसमें। तो ऐसे व्यापक अभियान भाई साहब ने बहुत किए और ग्लोबल हॉस्पिटल मेडिकल विंग के द्वारा जो आबू में 70 से अधिक माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंसेस जिसमें पूरे भारत के कहा जाए मेडिकल कॉलेज के डीन एमडीज अलग अलग विधायक मेडिकल से उनके सारे विशेषज्ञ भाई साहब कैसे सबको समाहित करना, हजार हजार की संख्या हमने ज्ञान सरोवर में देखी है डॉक्टरों की और यहां तक कहते सुना कि भाई हमें पेड़ के नीचे बस सोने दे देना है, एमडी डॉक्टर बोलता है हमको कहीं भी सुला देना हम आना चाहते हैं। मैं क्या कहूं आपको, तो मेडिकल विंग का नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए मुझे लगता है वंडरफुल और इतना उमंग उत्साह कि जैसे ना स्टेज पे ही जैसे वो गले लगा ले डॉक्टर्स को, इतना प्यार और इतना, और दादी की बड़ी दादी का तो विशेष विश्वास हासिल किया हुआ था आपने, जो चाहे नीचे नर्सेस की नर्सिंग के नर्सेस की कॉन्फ्रेंसेस, अभी भी हम अहमदाबाद एक आयुर्वेदा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अभी 15 दिन पहले जाना हुआ तो उन्होंने बताया कि मैं 98 या कब मैं आई थी कॉन्फ्रेंस में शांतिवन में, तो मैंने कहा कमाल है ये मेडिकल विंग की सेवाओं की और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे भाई साहब को। तो मैं सबसे पहले भाई साहब से यही पूछूंगा कि आखिर इतनी शक्ति आती कहां से है।
ओम शांति। हम देखते हैं ज्ञान सरोवर के भाइयों को या बाबा के बच्चों को कितना उमंग उत्साह में रहते हैं, कितना क्योंकि ये हमारे सामने हाथों से बना हुआ ज्ञान सरोवर है। रात को 12 बजे दादी जी से और बाबा की बात हो रही है, अब एक बाप दादा आए थे और विदाई के टाइम में दादी जी सामने थे तो दादी जी को बाबा बोलते हैं कि आपको ख्याल नहीं चलता है इतने बच्चे आ रहे हैं, कोई और स्थान लिया जाए और चाहे कोई मकान लिया जाए। तो दादी बहुत प्यार से बाबा को कहती हैं, बाबा कहीं जमीन नहीं मिलता है, कहीं माउंट में मकान नहीं मिलता है। बाबा सुनकर के मुस्कुराए और बोले कि बच्ची मिलेगा, हो जाएगा। दूसरे दिन रात को भगवान से बात हो रही है दादी जी की, दूसरे दिन सुबह ये दूध वाले गांव के वो आए दादी जी से मिलना है। अरे भाई क्या है, तुमको पैसा चाहिए, दूध के कुछ बाकी है तो ले लो, और तो नहीं मुझे दादी से ही मिलना है। दादी को जाकर के बोलो भाई और मैं बोला, दादी ऐसे ऐसे है दूध वाले आपसे मिलना चाहते हैं आज। बोले कोई बात नहीं है, बुलाओ। दादी के पास गए तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों की शादी है, मैं जमीन निकालना चाहता हूँ, पहले आपके पास आया हूँ, आप ले लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लेंगे तो फिर बाजार में जाएंगे। भगवान से रात को 12 बजे बात हो रही है, कोई जमीन नहीं है, और 11:30 की बात है दूध वाले खुद आए हैं। तो दादी जी ने बोला कि मिले, और उन्होंने कहा कि ठीक है जो आपको पैसा चाहिए दादी जी देंगे। दादी ने बल्लभ भाई और मेरे को और दो भाई को और भेजा, चार भाई हम आए, बोले कि देख कर क्या, वो जमीन दूध वाले आए साथ साथ, उन्होंने दिखाया तो ये खंडहर था, कटीली झाड़ियां थी, जानवर भी इसमें नहीं घुस सकते थे, इस तरह के उबड़ खाबड़ ये था। हम लोग देखा तो मन तो ये हो गया कि क्या करेंगे लेकर के, चले गए। दादी को सुनाया, दादी ने कहा कि नहीं मेरे को भी ले चलो शाम को। दादी आप जा नहीं सकते हैं, अब तो तुम लोग जा सकते हो और हाँ दादी नहीं जा सकती है, क्या समझाए, दादी चलेगी। दादी में इतना उमंग उत्साह, दादी वहां तक रैंप है, वहां तक तो रोड था और वहां से सीधा पगडंडी था। दादी आई 10 मिनट वहां खड़े होकर के कोने पर दृष्टि दिया, बोला कि ले लो। दादी ने वो कटीली झाड़ियां नहीं देखा, खंडार नहीं देखा, वो गड्ढा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बोला कि ले लो, कुछ नहीं होगा, बेचारे गरीब आए हैं उनको उनका काम तो हो जाएगा। ले लिया गया। कहानियां बड़ी है भाई साहब ने वो नहीं पूछा है। तो ये सब बाबा कराता है। उमंग उत्साह की बात जहां तक रही, उमंग उत्साह हमने भक्ति मार्ग में देखा, भक्तों को जिनको केवल दीदार हुआ था, साक्षात्कार हुआ था, मीरा को भगवान नहीं मिला, नारद को भगवान नहीं मिला, लेकिन एक साक्षात्कार से नाचने लगे। और हम लोगों को तो भगवान अपने गोदी में पढ़ा रहा है, गोदी में बैठाया है। थोड़े दिन पहले मुरली है, बाबा बच्चों को एडॉप्ट किया है। आज गरीब कोई साहूकार बच्चे को, साहूकार कोई गरीब बच्चे को एडॉप्ट करता है तो उसको नशा चढ़ जाता है, गरीबी भूल जाता है। हमारा इतना दुकान है, इतना फैक्ट्री है, इतना ये है, और भगवान हमको एडॉप्ट किया है तो नशा नहीं चढ़े। और ये हमारे से पूछा जाए कि कहां से आपको खुशी होती है, कहां से उमंग आता है, हम तो नाचते रहते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे किचन हो, और चाहे एवरएलडी हो, या कहां भी रखो, इसके हमेशा बुद्धि में रहता है किसके हैं, कौन चुना है, वही नशा खुमारी चढ़ी रहती है। कहां बैठे हो आप लोग, साधारण स्थान पर नहीं, इस स्थान को भगवान ने उद्घाटन किया है। सोचो दुनिया में इसे अच्छे अच्छे रिट्रीट हाउस मिलेंगे, लेकिन बाबा ने उद्घाटन नहीं किया होगा। ये तपस्वी कुमार यहां जो भोजन बनाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, हमारी दीदी निर्मला, उनको भगवान क्या कहता है, निर्मल आश्रम। सोचो ऐसे के सानिध्य में बैठे हैं, छत्र छाया में बैठे हैं, हम लोगों को तो मन से नाचना चाहिए। तो सदाएं खुशी, चाहे कोई भी सेवा हो, बीमारों की सेवा हो, चाहे विंग की सेवा हो, कहां भी सेवा हो, बस खुमारी चढ़ी रहती है। तो हम तो यही कहेंगे, सदैव बाबा को देखते रहो, नाचते रहो। हमारा ब्रह्मा बाबा बेगरी पार्ट है, चार आना भंडारे में नहीं, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। और बाबा मस्ती में मस्त है। भंडारी वाली पूछती है, बाबा क्या खाना बने, भोजन ब्रह्मा भोजन बनेगा, बच्ची ठहरो, 400 बच्चे चार आना भंडारी में नहीं है, मस्ती में मस्त है। तो हम किसके बच्चे हैं, उसी के बच्चे हैं, तो हम तो नाचते ही रहना चाहिए। शॉर्ट में ओम शांति।
थैंक यू भाई साहब। अभी हम हमारे अगले वरिष्ठ भाई जी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहूंगा कि अब एक हॉल है, जैसा आप समझिए कि जिसमें 150 ऐसे हार्ट के पेशेंट बैठे हैं जिनको डॉक्टर ने कहा एंजियोग्राफी के बाद कि अगर यहां से निकलोगे तो गारंटी नहीं है, माना अगले पल की आपकी गारंटी नहीं है, हार्ट अटैक से आप आपकी जान जा सकती है, आप तुरंत आप बाईपास कराएं या जो भी। अब उन सब 150 लोगों को एक अनाउंस होता है कि शाम को सबकी बाईपास सर्जरी होनी है मेडिटेशन हॉल में, जो भी बाबा का कमरा है। तो हम सब भी चौंक गए क्योंकि हम भी उस समय जब शुरू शुरू में मैं ओम शांति मीडिया के आधार पे रेगुलर 25-30 हार्ट के ऐसे जो इस कैट के प्रोजेक्ट में आते थे उनका इंटरव्यू लेने जाना होता था, तो उस ग्रुप में हम भी थे। तो जब भाई साहब ने ऐसा कहा ना कि अनाउंस किया कि सबकी बाईपास सर्जरी 150 लोगों की होने वाली है शाम को योग में, कैसे योग के द्वारा बाईपास सर्जरी होनी है, ये हमने नया एक देखा। कितनी मन बुद्धि की कमांड है कि 150 को एकाग्र करना और उनकी मन बुद्धि को कंट्रोल करके उनके ही द्वारा उनकी आर्टरी को ओपन करना योग के द्वारा। तो ऐसा अनोखा, और मैं समझता हूँ विश्व में ऐसा अनोखा कार्य जो भाई साहब ने, बाबा की प्रत्यक्षता भी जिससे बहुत ज्यादा हुई, तो ऐसे भाई साहब ऐसी अनोखी सेवा के सूत्रधार हमारे बीच डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं। आप वर्तमान समय में हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में ट्रॉमा सेंटर पे आप सेवाएं दे रहे हैं। आपने 98 से जो माउंट आबू में कैट का प्रोजेक्ट शुरू किया हार्ट के रोगियों के लिए, राजयोग मेडिटेशन डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा कैसे क्योर होना है बिना बाईपास एंजियोप्लास्टी के, ऐसा अनोखा अभियान आपने कैट का शुरू किया और अभी तक 10,000 हार्ट के पेशेंट को आप लाभान्वित कर चुके हैं। और मैं समझता हूँ 150 से अधिक कैट के प्रोग्राम हो चुके हैं 15-15 दिन के, सब हार्ट के पेशेंट को रखकर। तो भाई साहब, इवन भाई साहब दिल्ली में भी एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल में वहां के डिपार्टमेंट हेड के रूप में सेवारत थे, और भाई साहब सब कुछ छोड़ के यहाँ माउंट आबू में बाबा की सेवा में ऐसे समर्पित हुए। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि भाई साहब आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि मैं, आप इतने सक्सेसफुल हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रहे थे, बाहर की दुनिया में आपका सम्मान था, मान था, आप कैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित हो गए, आपको ये कैसे प्रेरणा मिली?
ओम शांति। आप सबने आज की तो मुरली सुनी ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो जिसके दिल पर, जिसकी दिल सच्ची हो, साफ हो, बाबा उसके साथ है ही है ना। तो मुझे तो, मैं हमेशा जब दिल्ली में था तो हम लोगों की एंजियोप्लास्टी होती थी हमारे हॉस्पिटल में, एंजियोप्लास्टी करके भेजते हैं, बाईपास करके भेजते थे, और हर महीने मीटिंग होती थी, इतनी एंजियोग्राफीज हुई, ऑडिट होता है ना, तो उसमें बताते थे कि इतनी एंजियोग्राफीज हुई, इतने का बाईपास हुआ, इतनी के एंजियोप्लास्टी हुई। तो सब पूछते बाकी लोगों की क्यों नहीं हुई, मतलब हमको रिपोर्ट करनी होती थी। तो कई पेशेंट, उन दिनों बीमारी पहले तो 60-70 की उम्र में आती थी, फिर बीमारी धीरे धीरे 40 में आनी शुरू हुई, 50 में आनी शुरू हुई, फिर 40 में, और फिर 40 के नीचे। तो ऐसे पेशेंट कई आते थे जो 35-36 साल के होते थे, यंग परिवार होता था। तो उनकी जब हम एंजियोप्लास्टी करके भेजते थे, और उस समय एंजियोप्लास्टी के 2.5 लाख रुपए लगते थे एक स्टेंट डालने के, उन दिनों की बात 94 की बात थी। और दिल्ली में एक MIG फ्लैट, मतलब 2 BHK, 2 बेडरूम, हॉल वगैरह सब, किचन वगैरह, तो उसका रेट भी 2.5 लाख रुपया था। तो कुछ पेशेंट तो अपना घर बेच के, जो गरीब थे ना, मिडिल क्लास भी थे, लोअर मिडिल क्लास थे, घर बेच के अपने एंजियोप्लास्टी कराते थे। तो मुझे याद है एक पेशेंट की ऐसी बात है कि वो एक पेशेंट का ऐसा मुझे, जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित मुझे किया, वो एक पेशेंट था जिसकी एंजियोप्लास्टी करके भेजा, हार्ट अटैक से आया था, 36 साल का ही था। तो उसकी वाइफ को मैंने ही कहा था कि भाई आप जो है अपने, उसके दो बच्चे थे, एक छोटा, एक 6 साल की बच्ची थी, एक गोदी में बच्ची थी। तो मैंने कहा आपके पति की हालत बहुत खराब है, सीरियस हालत में है, इसको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, एक ब्लॉक है 80% का LAD में, तो उसकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, और नहीं तो जान को खतरा है। हमको यही पता था, हम यही बोलते थे। तो उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, जैसे भी करके मेरे पति को बचा लो, हमारे घर में और कोई है ही नहीं, हम 3-4 जने हैं बस, और हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं, ढंग से कोई है नहीं, तो आप कैसे भी करो। तो उसने कहा, मैंने कहा ठीक है 2.5 लाख रुपए आप हमारे वहां जमा करा देना, वहां इकोनॉमी सेक्शन होता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो कल जमा करा देना, कल ही एंजियोप्लास्टी कर देंगे। 2.5 लाख जमा कराया उसने, हमने एंजियोप्लास्टी करके भेज दिया। 3 महीने के बाद ही वो दोबारा तकलीफ हो गई उसको, फिर वापस आ गया। तो हमने उसको एडमिट करके इलाज किया, फिर अगले दिन उसकी एंजियोग्राफी दोबारा की, उन दिनों सेम डे एंजियोग्राफी नहीं करते थे, अगले दिन करते थे। तो एंजियोग्राफी की तो फिर बताया कि उसका जो स्टेंट लगाया था वो बंद हो गया था, एक ब्लॉक और आ गया था 80% का, एक 60% का ब्लॉक आ गया था। तो हम जब राउंड पे जाते ना सुबह, हम 3-4 डॉक्टर होते हैं, साथ में नर्सेज होती हैं, तो हमने कहा उसको कि अब तो आपके 3 ब्लॉक हो गए, अभी 2 एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी या फिर आपको बाईपास करा लो, 3 लाख रुपए जमा करा दो। ऐसा कहके हम तो आ गए, जैसे सब पेशेंट को बताते हैं। तो आ गए, तो जैसे ही मैं डॉक्टर ना, जहाँ नर्सेस खड़ी होती ना, वहां पे आके खड़ा ही था मैं, उसने अपनी वाइफ को भेजा मेरे पास कि डॉक्टर साहब को बुला के लाना। तभी मैं सफेद पेंट शर्ट ही पहनता था, बाकी सब लोग कलरफुल पहनते थे, मैं सफेद पेंट शर्ट अधिकतर पहना करता था। तो मैं गया, कहते डॉक्टर साहब आपने, याद है आपको मैं पहले 3 महीने पहले आया था, पता है मैंने कैसे एंजियोप्लास्टी, मेरी स्टेंट लगाया कैसे लगाया गया था, घर बेच के मैंने एंजियोप्लास्टी कराई, घर बेच के एंजियोप्लास्टी हुई, और अब तो मेरे वो जो पैसे थोड़े बचे थे वो भी खत्म हो गए, 3 महीने से कुछ काम नहीं किया, और अभी आप कहते 3 लाख फिर जमा करा दो, अब मैं क्या बेचूं। मतलब वो इंसिडेंट मुझे याद है, उसने मुझे इतना हर्ट किया, क्योंकि मैंने MBBS के बाद IAS किया था, MBBS करने के बाद IAS में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया था, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था उस समय, तो तो उसमें मैंने जब देखा कि वो जो वो किया ना, तो मेरे को बचपन से बहुत शौक हो गया था, मतलब MBBS करने के बाद ही इंसान को समझने का, इंसान दो एक
नहीं भाई वो मोबाइल में बजा
ओके आज किसी और का बजा अच्छा हाँ। तो तब मेरे को बहुत शौक हो गया था समझ, मतलब हर पेशेंट की मैं साइकोलॉजी स्टडी करता था, कोई बीमारी भी हो चाहे वो दमा हो चाहे कोई बीमारी भी होती थी, इंसान को बीमारी से रिलेट करना, उसकी बीमारी को उसके मन से रिलेट करता था। तो तब मेरे को मतलब जो है मैंने तभी मैंने उससे बात बस इतनी बात सुनी, मैं वापस आ गया लाइब्रेरी में गया, तो लाइब्रेरी में देखा ऐसे बहुत सारी जगह देखा था लिखा था कि भाई नॉर्मली हम क्या देखते हैं एंजियोप्लास्टिग्राफी कैसे करनी है, हार्ट का पेशेंट कैसे मैनेज करना, हार्ट अटैक कैसे मैनेज करना, इरेगुलर हार्ट बीट कैसे मैनेज करनी है, जो हमारे काम की बात है तो वही तो देखते हैं हमें जर्नल्स में, हम सब बातें देखते नहीं है, सब बातें बहुत सारी बातें हम क्यों पढ़े, फालतू टाइम किसके पास होता है। तो जब अब ये बात मेरे मन में आई कि भाई इनको मैंने अभी एंजियोप्लास्टी करके भेजा 3 महीने पहले और फिर तकलीफ हो गई और भी ब्लॉक बढ़ गए, 3 महीने में इतने सारे ब्लॉक कैसे बढ़ गए, एक 40 वाला 80 हो गया, एक नया 60 और आ गया और ये तो पूरा 100% बंद हो गया। तो तब मैंने देखा कि उसमें कुछ ऐसे नए नए आर्टिकल्स आए हुए थे जो गुस्सा करते हैं ना, अभी आप में से भी चेक कर लेना, जो गुस्सा करते हैं उनको 3.5 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, जल्दीबाजी करते हैं ना, टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में रहते हैं, परफेक्शन का प्रेशर, मेरे हिसाब से हर काम होना चाहिए, उनको भी 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, जो बात बात में उदास हो जाते हैं उनको 5 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, जो अपने मन की टेंशन शेयर नहीं करते ना किसी से उनको भी 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, जो सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं नाजुक स्वभाव जैसे लागनी स्वभाव कहते हैं ना, बातें चिपक जाती हैं, भूलते नहीं, माफ नहीं करते किसी को शायद, उनको भी ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं। ये किताबों में लिख उन जर्नल्स में आया हुआ था। तो मेरे को तभी मतलब उन्हीं दिनों आया था 93-94 में रिसर्च हो रही थी, तो इस तरह की विदेश में हुई और उनके बारे में एब्स्ट्रैक्ट। तो मैं तो 96 से जब एम्स में था तब से मैंने ये शुरू किया था हार्ट का जो मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन, जिस दिन समझ आया बाबा समझ में आ गया, मेडिटेशन समझ में आ गया, उस दिन से मैंने अमृत वेला मिस नहीं किया, मुरली कभी मिस नहीं की रेगुलर आज तक, कुछ भी हुआ चाहे बीमार था तो भी कभी ट्रेन में हो प्लेन में हो कभी नहीं मिस नहीं किया, तब से समझ आया था। तो मेरे को तो राजयोग का पता था कि राजयोग से हम ये अगर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं जल्दी चिंता गुस्सा उदासी को मन की बातें, कहा जाता ना अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से, है ना कहते हैं ना, तो वो वाली बात है। तो मैंने यही चिंता मुझे लग गई कि मुझे अभी ना क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, शायद मेरी फरवरी का ही पेशेंट है, फरवरी सेकेंड टाइम में फरवरी में आया था पेशेंट, पहला अटैक उसको नवंबर में हुआ था, नवंबर के एंड में, फिर फरवरी में दोबारा आया था। तो मुझे 26 फरवरी को पहला बार बाबा से अमृत वेले साक्षात्कार हुआ कि बाबा ने मुझे लिखा है कैसे कैसे बीमारी हुई, ब्लॉकेज क्यों होते हैं, क्या मुख्य कारण है और भी बीमारियां कैसे होती हैं, कारण क्या बीमारियों का। तब तक तो हमने ऐसे किताबों में पढ़ते हैं तो खाली फिजिकल डायमेंशन पढ़ते हैं। फिर 27 तारीख को फिर मुझे हुआ और 27 तारीख को फिर दोबारा मुझे ऐसा महसूस हुआ बाबा से, बाबा ने फिर दिखाया कि कैसे बाबा कैसे हमारी मेडिटेशन के द्वारा हमारी ब्लॉकेज खुल सकती है, ये ऐसे जैसे मेरे सामने चल रहा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा फिर लंबा हो जाता है। तो मुझे मैं घर पे आया मुरली सुन के, उसने मुरली सुनने गया, मुरली सुन के घर पे आया, घर में आते मुझे फोन आया एक सेंटर की बहन का, हालांकि क्योंकि हम 68 से ज्ञान में थे, हमारे घर में गीता पाठशाला थी, मैं पर 86 में रेगुलर स्टूडेंट बना, 18 साल पेट में रहा, टोलियां खा के दानियों से मिलते हुए खाते पीते, हमारे घर में ही मतलब म्यूजियम बना हुआ था हमारे ड्राइंग रूम में, पर कभी ध्यान नहीं किया इतना ज्यादा, पर टोली खाने का शौक था, दादियों से मिलने का शौक था, चीजें मिलती थी मीठा अच्छा लगता था बढ़िया लगता था, तो ऐसे चलते रहे थे। और MBBS की पढ़ाई तो पता कैसी होती है, तो उसमें टाइम होता ही नहीं सोचने का भी, सारा 73 का मेला, 81 का लाल किला का मेला सब मैंने अटेंड किए थे सब, क्योंकि मेरा रेगुलर माता पिता से जाना होता ही था। तो फिर जो है मैं जैसे बताया आपको, तो फिर 86 में जब ये शुरू हुआ, 86 में, फिर 94-5 में तो मुझे ये हुआ, तो फिर मैं घर में जैसे आया तो बहन जी का फोन आया, हमारी वही बहन जी जो पुराने वाली बहन थी ना जो हमारे घर में आती थी, 18-19 साल की थी, कृष्णा बहन के साथ आती थी, छोटी थी सरला बहन रानी बाग वाली, उसका फोन आया कि गुप्ता जी आपको हमारा सैटरडे को हमारे यहाँ एक वो है 6 मार्च को डॉक्टर्स की गैदरिंग रखी है, टुगेदर रखी गैदरिंग मतलब गेट टुगेदर रखी है, उसमें आपको 3 बजे का टाइम रखा है, आप उसमें आना भाषण करना। और मैंने कहा ना किसी और डॉक्टर को बुलाओ, मैंने कहा डॉक्टर एमडी गुप्ता बैठे हैं और दूसरे लोग बैठे हैं दिल्ली में, उषा किरण उनको बुला लो, मेरे को नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरे को टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। और बिजी था भी, 7 बजे निकलता था हंसता अपने घर से, 9 बजे एस्कॉर्ट्स पहुंचता था, खुद ड्राइव करके जाता था, भीड़ बहुत होती थी, ट्रैफिक बहुत होता था, और शाम को 8 बजे घर आता था एस्कॉर्ट से, एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट से, तो टाइम ही नहीं होता था। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं आ सकता, किसी और को बुला लूं। कहते नहीं नहीं आपको ही आना पड़ेगा, लोग आपसे सुनना चाहते हैं, जो आप सुनाते हैं ना, मैंने अपना सुना था स्ट्रेस और हार्ट डिजीज के ऊपर, कि तनाव से हार्ट की हमारी आर्टरीज कैसे ब्लॉक होती है, और जगह जगह मेरे को भाषण करने के लिए बुलाते थे, मैं जाता था बोलने के लिए। तो फिर जो है मैंने कहा ठीक कोशिश करूंगा दीदी, 3 बजे कोशिश करूंगा। मैं जब पहुंचा सेंटर में तो 4 बज रहे थे उस, और बहन जी अनाउंस कर रही थी डॉक्टर गुप्ता तो आए नहीं, चलिए आप सभी 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन करके फिर हम लोग, आप थोड़ा नाश्ता आपके देखा फिर आप जाना। जैसे मुझे देखा कहते डॉक्टर गुप्ता आ गए, मैं जाके बैठ गया, और पहली बार मैंने 45 मिनट बोला होगा, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, है ना, पहली बार अनकंट्रोल्ड, मतलब ऊपर से बुलवा रहा है, तो मैंने जो बोला फिर ऊपर को बैठते बोल रहे जो एक बाकी सब डॉक्टर्स चले गए, क्वेश्चन पूछे मैंने आंसर किए, फिर एक डॉक्टर रुक गया, वो DRDO का डॉक्टर था, कहते डॉक्टर गुप्ता आप जो बोल रहे थे इज इट पॉसिबल, ये हो सकता है क्या? मैंने कहा मैंने पता नहीं क्या बोला, मुझे पता था ही, तो मैंने कहा क्या बोला मुझे पता ही नहीं, तो पर मैंने कहा नहीं मैंने बोला है तो जरूर हो सकता है, कि आप इस पे बैठ के हम ना हमारी हमारे यहाँ हमारे आप इंस्टीट्यूट में आ जाओ, तो एक बार हम बैठ के मीटिंग करते हैं इसके ऊपर ना, तो मीटिंग करते हैं और हम कुछ रिसर्च करेंगे। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है रिसर्च वर्सर्च करने का, मेरे को टाइम नहीं, हम तो दिन रात मरीज देखते हैं, हम टाइम रिसर्च क्या करेंगे। कहता नहीं आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप आ जाओ। तो मैं 7 बजे पहुंचा उनके शूट में, दिल्ली में था उनका इंस्टीट्यूट, तो दिल्ली में मैं उनका 7 बजे अकेले बैठे थे, अंधेरा था पूरी बिल्डिंग में, मैंने कहा कैसे वो बैठे थे वहां पर, 3 लोग थे, 2 लोग और थे मैं तीसरा, बातचीत हुई, उन्होंने कहा ऐसा करो डॉक्टर गुप्ता ऐसा करें, परसों हमारे यहाँ हमारे सेंटर में डॉक्टर कलाम साहब आ रहे हैं, डॉक्टर कलाम साहब से शेयर करेंगे तो कुछ इस पर काम करेंगे। डॉक्टर कलाम का नाम सुना था मैंने, अच्छा ठीक है। मैं 1:30 बजे पहुंचा उनके इंस्टीट्यूट में, किसी का फेयरवेल था तो वो उनको बुलाया गया था, DRDO को डायरेक्टर जनरल तभी, तो मैं जो है तभी वहां पर पहुंच गया। डॉक्टर कलाम साहब को मैंने कहा, उन्होंने कहा कि कैसे कैसे क्या होता है, वो ही वाज सो सरप्राइज, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा यस सर व्हाई नॉट, कहता अगर आप ये काम करते हो तो मैं आपके साथ हूं, मेरा पूरा DRDO आपके साथ है, और मैं प्राइवेट अस्पताल में कंसल्टेंट, और वो DRDO पहले किसी प्राइवेट, अभी तो करती है पब्लिक पार्टनरशिप करती, पहले उस समय कोई नहीं करता था पब्लिक पार्टनरशिप, तो मेरे को भी उमंग लग गई। तो उसने कहा फिर उसने कहा ठीक है आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, मैंने प्रोजेक्ट बनाया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दे दिया, प्रोजेक्ट हो गया सबमिट हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, DRDO की कोलैबोरेशन बनाया, और ग्लोबल का नाम मैंने प्रताप भाई से पूछ के डाल दिया, हालांकि था तो इसको मेन तो एस्कॉर्ट्स का नाम रखा था, और नीचे एक ग्लोबल अस्पताल लास्ट नाम ग्लोबल अस्पताल का डाल दिया, बीच में DRDO फिर लास्ट में ग्लोबल अस्पताल डाल दिया, नीचे लिख दिया। और फिर मेरे को जब गवर्नमेंट को चला गया तो मेरे को चिंता होने लगी, रोज मैं देखूं बाबा मुझे कहे बच्चे दिल्ली छोड़ो दिल्ली छोड़ो दिल्ली छोड़ो, अब मैं को दिल्ली कहाँ जाऊं, मैं दिल्ली में मेरी ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है, एस्टेब्लिश सब कुछ है, दिल्ली कहाँ जाऊं, छोड़ के कहाँ जाऊं। तो अब मेरे को हालांकि कई बार प्रताप भाई कहते थे आप आ जाओ आप मधुबन चले आओ, मधुबन में आपकी आवश्यकता है, तो मैं कहता भाई मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरे पिताजी बीमार थे उनको पैरालिसिस हुआ था। तो तब जो है एक बार फिर प्रताप भाई का फोन आया, साथ में निर्भय भाई बैठे थे, साथ साथ ही बैठे, दोनों इकट्ठे ही बैठे थे, कि गुप्ता जी आ जाओ आप ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे आप आ जाओ। अभी भी शायद कोई पेशेंट की डेथ हुई थी, कोई अहमदाबाद ले जाते हुए ना, कोई MI का हार्ट अटैक का पेशेंट था, रास्ते में डेथ हो गई थी, है कोई रास्ते में डेथ हो गई थी, तो आप आ जाओ अभी बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा देखो मुझे तो रिसर्च करने आना है, मुझे कोई नौकरी करने नहीं आना आपके अस्पताल में, मेरे को रिसर्च करनी है और ऐसे ऐसे बात है मेरे दिमाग में आजकल चल रहा है। डॉक्टर त्रेन भी बोलते नहीं नहीं आप यहाँ करो रिसर्च, में आपकी रिसर्च यहाँ बहुत अच्छी, मैं सारी फैसिलिटी दूंगा और सारे विश्व में फेमस कर दूंगा इस रिसर्च को कुछ दिनों में। तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ बोला नहीं, मैं चुपचाप वहां से उठ के चला आया। तो फिर मतलब मैं ये बता रहा हूँ, बाबा जैसे फिर मेरे को ऐसी लगन लगी। मुझे याद है 6 मार्च को मैंने, 27 फरवरी को मेरे को विजन हुई, 6 मार्च को भाषण था मेरा डॉक्टर, 9 मार्च को डॉक्टर कलाम से मिला, 1995 की बात है, और ऐसे 11 अप्रैल को मेरी बात हो गई, जब डॉक्टर नाम से सबमिट हो गया। मेरे को अपने पिताजी से बहुत डर लगता था, डर माना हर एक को लगता है, उस समय लगता था किसी को, पिताजी बीमार थे। तो मैंने 11 अप्रैल को पिताजी को दिखाया कि पिताजी अभी ना ये रिसर्च प्रोग्राम बनाया, पिताजी तो बीमार थे, पैरालिसिस हो रखा था राइट साइड का बॉडी का, तो वो इंटेलेक्चुअल थे, तो ज्ञान में भी चलते थे पहले। हाँ बेटा, इससे तो बहुत लाखों लोगों का फायदा होगा, तो मेरी चिंता नहीं करो, मुझे तो मरना ही है, 3 महीने में 6 महीने में 2 साल में 1 साल में मरना ही है, तुम चले जाओ माउंट आबू, मुझे पता तुम नहीं बोलोगे मुझे, पर तुम माउंट आबू चले जाओ। मुझे खुशी हुई एकदम से, और मैंने आकर के घर पे, हम रहते थे वहीं पर ही, मैंने अपना सारा एक ट्रक कर लिया और सामान, मतलब 14 अप्रैल को वहां से बैठे ट्रक में सामान चढ़ाया, और 14 तारीख को आश्रम एक्सप्रेस से बैठे, 15 अप्रैल को सुबह ग्लोबल में पहुंच गए। कितने दिन में? सवा महीने में दिल्ली छोड़ के सब कुछ फिनिश करके, सारी जगह चैम्बर, सब 5 जगह बैठता था मैं, 5 अस्पतालों में सब कुछ छोड़ के माउंट आबू आ गया। तो ये बाबा की लगन थी, और ऐसी दीवानगी थी, पागलपन था अंदर से कि बाबा घर में जाना। मधुबन की गलियां, प्रताप भाई मुझे लिखा करते थे एक लेटर में ना, मधुबन की गलियां तुझको, ऐसे गीत है ना बाबा, हाँ हाँ। मधुबन की गलियां तुझको पुकार, ऐसे तो मुझे वो लाइनिंग गलियां इतनी अच्छी लगती थी, मतलब इधर से जाते ना जो एवर हल्दी के सामने से उधर जाते थे, मेरे को लगता था ये मेरी गलियां, मतलब मेरे को बहुत पुरानी गलियां, और दादियों से शुरू से ऐसे लगता दादी जैसे मेरी है, मतलब किसी भी दादी से ऐसे प्रायपन नहीं लगता था। शुरू में भी आते थे ना हम लोग, शुरू में सभी दादियों में बहुत प्यार से, सभी बड़ी दादी, रतनमणि दादी, निर्मल शांता दादी, सभी ऐसे लगते जैसे अपनी है, और दादियां भी तुरंत आइडेंटिफाई करते, जानकी दादी तुरंत आइडेंटिफाई करते, नहीं ये तो अपना भाई है, किसी से मतलब आर्टिफिशियलिटी नहीं थी, तो ऐसा मतलब अपना घर यही लगता था, ऐसी लगन थी। तो बस तो बाबा ग्राम पहुंच गए। वो वंडरफुल,
थैंक यू भाई जी। अभी मैं भाई साहब से, डॉक्टर बनारसी भाई से पूछना चाहूंगा कि भाई साहब, ये 250 से ज्यादा स्वास्थ्य मेले इतने बड़े बड़े पूरे भारत में, जगह जगह व्यसन मुक्ति के कॉन्फ्रेंस सेमिनार, तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि केवल इस राजयोग के द्वारा ही पूरे भारत को हम ऐसा स्वस्थ बना सकते हैं? इन सारे अभियानों के दौरान कुछ विशेष अनुभूतियां यदि हुई हों तो आप जरूर हमें शेयर करें। जैसे आप
जो बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि माई इंडिया हेल्दी इंडिया अभियान से क्या भारत हेल्दी बन सकता है, स्वर्ग बन सकता
मेले इतने आपने पूरे भारत में लगाए और सब।
ब्रह्मा बाबा अकेले, शिव बाबा प्रवेशता हुआ, बच्चे तुमको विश्व को परिवर्तन करना है। हमारी दादियां बड़ी भोली भाली वो सुनाती थी, गुलजार दादी सुनाती थी कि हम 6 साल 8 साल के थे तो बाबा कहते थे बच्ची तुमको विश्व परिवर्तन करना है। अरे भारत ही नहीं देखा है, विश्व का क्या क्या होगा, कैसे परिवर्तन करना है, सोच सकते हैं। तो ये ऊपर वाले की ये था, जैसे गुप्ता जी ने सुनाया कि 1.25 महीना पूरा जो दिल्ली में चिपके हुए थे छोड़ ही नहीं सकते थे, 1.25 महीने में सब कुछ करके आ गए। तो फादर बीमार हैं पैरालिसिस है, फिर भी उनको भी छोड़ करके ऊपर वाला करा रहा है। तो माई इंडिया हेल्दी इंडिया या 250 मेले, ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं था। एक बार अव्यक्त बाप दादा के साथ, पहले तो बहुत बाबा मिलते थे, वो दिन सुनाए तो आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। बाबा एक एक से मिलते थे, उसके मुख में टोली खिलाते थे, सोचो भगवान मुख में टोली खिलाए, कैसा दिन होगा, वो समय कैसा होगा। तो वो तो बाबा से मैं कहीं से ये करके आया था, तो बाबा को समाचार सुनाया, बाबा फलाने जगह हमारी एग्जीबिशन हुई, मेले हो चल रहे हैं, बहुत अच्छा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे एक जगह दीपक जलाओगे तो सारे भारत में दीपक जलेगा क्या? कोने कोने में दीपक जलाओगे तो भारत में उजाला हो जाएगा। बाबा की वो महावाक्य भूलते नहीं है। तो इसलिए भाई प्रदर्शनी तो एक ही जगह होगा, तो मेला बनाया और सब 250 मेला। उससे ये बेनिफिट हुआ कि प्रदर्शनी तो एक छोटी सी जगह में हो जाता, मेला तो पूरे शहर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसमें 10-12 स्टॉल होते थे, उसका उद्घाटन होता था, बहुत पब्लिसिटी होती थी, होल्डर सब जगह लगाए जाते थे होल्डिंग। तो इस तरह से बाबा की प्रेरणा थी, नहीं तो 250 मेले करना कोई खेल नहीं था। और उन दिनों में डॉक्टर प्रेम मसंत को बाबा ने अमेरिका से, आप सोच सकते हो, एमडी ऑन्कोलॉजिस्ट फिजिशियन, अमेरिका में प्रैक्टिस करने वाला, वो छोड़ छाड़ के आ गया और बोला कि बनारसी भाई मेरे को जो सेवा दोगे वो करेंगे। हमने कहा कि आप मेले में जाओगे? बोला कि जहां भी भेजो। वो व्यक्ति हर जगह मेले में जाकर के, आज प्रेम मसंत इतना अच्छा भाषण करते हैं, वो मेले का देन है। जैसे बाबा कहते हैं बूढ़ी बूढ़ी माताओं को कि भाई तुमको बोलने नहीं आता है तो प्रदर्शनी में जाओ, चित्र देखो, समझाने वालों के पीछे खड़े हो जाओ, क्या सुनाते हैं, सुनते सुनते आप ही हो जाएंगे। तो डॉक्टर प्रेम मसंत जी इतना ये हुए। तो बाबा की ये कमाल है, बाबा सच बताएं, इतनी बेगरी पार्ट में हम लोग आए हैं, इनलैंड लेटर नहीं मिलता था, यीशु दादी हमारी इतना पावरफुल थी, पोस्ट कार्ड देती थी, भाऊ पोस्ट कार्ड लिखो, इनलैंड तो दादी दीदी लिखती है ना, अभी तो आप पोस्ट कार्ड लिखो। वो कब लिखते थे? रात को 10 बजे, सब कारोबार पूरा हो जाता था। उन दिनों में किचन में काम करते थे, डिस्पेंसरी में काम करते थे, डिस्पेंसरी में काम करने के लिए हमारा दादा आनंद किशोर, बिहारी बाबू तुम खाता पीता है, सेवा करता है, और तुम इतना पढ़ा है तो उसका पढ़ाई का क्या किया, क्या करना है, सेवा जो मिल रही है वो करना है, आता नहीं, पढ़ाई तुम किया है उसका भी उपयोग करो। हम बोले कहाँ बैठेंगे? उन दिनों में चेयर नहीं थी, यीशु दादी के ऑफिस में चेयर होती थी, बाबा का चेयर, कुर्सी नहीं थी। तो दादा अपने रूम से छोटा सा स्टूल, जिस पर चढ़कर अलमारी से कुछ कपड़े या कुछ निकालते हैं, वो दिया, और छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स था, स्टूल पर बैठ करके यहां फर्स्ट एड बॉक्स रख करके दवाइयां देते थे, लोगों को फायदा हो जाता था, और इतना फायदा हो जाता था। हमारी बहनें टीचर बने, पार्टी लेके आती थी, बाबा से मिलती थी तो सारा समाचार सुना देती थी, बाबा पूछते थे और कुछ कहना है, तो बाबा मेरे को ये तकलीफ है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तुम यहां से होम्योपैथी दवा लो, ठीक हो जाओगे। वो सुबह आकर के कहती है बाबा ने भेजा आपके पास, आपको दवाई देना है। सोचो भगवान भेजता है, कितना नशे की बात है, भगवान भेज रहा है तो जवाबदार उसकी है, देते थे उसको फायदा हो जाता था। सारे आबू में कोई होम्योपैथी नहीं था, लोगों को पता लग गया कि इनके पांडव भवन में होम्योपैथी डॉक्टर है, बहुत अच्छा है, फायदा लोगों को होता है। सीआरपी के जवान आ जाते थे, एक दिन 10 जवान वर्दी में आ गए, दीदी दादी बैठी थी निर्भय भाई के ऑफिस के आगे, तो दीदी पूछती दादी क्या हो गया इतने पुलिस घर में घूमने लगे? अत नहीं दीदी, ये पुलिस घूम नहीं रहे हैं, यहाँ अपना जो बनारसी है ना वो होम्योपैथी डॉक्टर है, तो आबू में कहीं होम्योपैथी नहीं मिलता है तो यहाँ होम्योपैथी दवा लेने आते थे। दीदी बुलाई शाम को, बोलती कि तुम किचन में नहीं जाओ, होम्योपैथी दवाई दो, वीआईपी सेवा करो। तो इस तरह से बाबा करा रहा है, हमारी ये नहीं है, होम्योपैथी तो बहुत सारे दुनिया में है, तो बाबा करा रहा है। वीआईपी सेवा के लिए हम किस में जाते थे? एक पुरानी साइकिल थी, दादी ने बुलाया कि इधर आओ, इधर पैदल जाता है सर्किट हाउस और म्यूनिसपैलिटी में, ये साइकिल लो। वो पुरानी साइकिल पर हम जाते थे। मृत्युंजय भाई 83 में आया, 84 में आया। तो मृत्युंजय भाई ने बोला, दादी ने बोला कि बनारसी के साथ जाओ वीआईपी सेवा करने के लिए। तो आया मेरे पास, तो हम बोला ठीक है चलो। तो बोला किसमें चलना है, ये साइकिल है पीछे बैठ जाओ, हम चलाते हैं, या आप चलाओ मैं बैठू। बोला कि साइकिल पर चलेंगे हम, यही तो मेरे पास गाड़ी है। तो बोला कि हम अपनी लेम्बरेटा लाए हैं, वो बेंगलोर से स्कूटर लाया था। बोला कि आप बैठो हम चलाते हैं। वो मुझे मृत्युंजय भाई स्कूटर चलाना सिखाया और हम सेवा दोनों करते थे। कहने का भाव मेरा ये है, उमंग उत्साह में रहिए, भट्टी भी करते हैं उमंग उत्साह से करो, मुझे फरिश्ता बनना है। अरे बनाने वाला खड़ा है, आपको क्या चिंता है, एडॉप्ट उसने किया है ना, तो उसको चिंता है किसको एडॉप्ट किया है। तो इसलिए आप उमंग उत्साह में रहिए, बाबा आपसे काम कराएगा। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसे ये हो जाती है, वो कराने वाला वो करा रहा है। तो बाबा का ये कमाल है। उन दिनों में 150-200 पेशेंट होते थे, सीटी गिनती करता था, किचन में राजमा चढ़ा के आता था, क्योंकि निर्भय भाई हमारे थे, दादा नारायण रोजी बहन के फादर, ये सारे वीआईपी थे, और 50-60 पेशेंट का भी बनाता था। तो सीटी गिनती करता रहता था, और बाबा डिस्पेंसरी में बैठ करके और दवाई देता था। सीटी पूरा हो गया तो हम पेशेंट को कहते थे, 2 मिनट में मैं आता हूँ, यहीं बैठे रहो, कुकर उतार करके आते थे। मतलब कि इतना उमंग करना है, ऐसा नहीं कि अरे हम किचन में काम करते एक तो करेंगे यहां, नहीं, बाबा करा रहा है ना। अरे मेरा भाग्य है, अहमदाबाद में था, भाई साहब का फोन गया, दीदी का फोन गया, हम बोला कि नहीं मैं आऊंगा। निर्भय भाई को बोला मैं आज रात को जा रहा हूं, आज रात को या कल सुबह 4 बजे और निकल करके 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा, कोई डॉक्टर मिस नहीं करूंगा। बोला अच्छा जाओ। तो कहने का आए, तो आप लोगों से इतने महान आत्माओं से दर्शन हुआ, लेन देन हुई। तो कहने का भाव है कि बाबा करा रहा है, हमारी कोई हस्ती नहीं है इतना मेला करना। इतने बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, भाई साहब ने कहा कि इतने बड़े डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, सुबह 4 बजे उठ करके भाग भाग करके, अगस्त में हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है, वो शॉल ओढ़ करके आते हैं, भीगते आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और उनको अनुभूति होता है। तो मैं अनुभूति कराता हूं, बाबा करा रहा है। हमारे केवल उमंग सारे बाबा ने इनको बुलाया है, नहीं तो यही संस्था ब्रह्मा कुमारी 83 में यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस होती थी, 82 में होती थी हमारे ओम शांति भवन में, वर्गीकरण के वर्कशॉप होता था, तो हमारे मेडिकल में कौन होते थे, होम्योपैथी आयुर्वेदी वेटनरी डॉक्टर होते थे, बड़ा मुश्किल से एलोपैथी 1-2 डॉक्टर होते थे। और वो दिन और आज दिन कितने डॉक्टर एमडीएमए से कम हमारे कॉन्फ्रेंस में अलाउ नहीं करते हैं, और वो भी 10 बेड के रूम में सोते हैं। बोलते हैं कि आप चिंता नहीं करो, हम 10 बेड में सोएंगे, लेकिन हमको कैंपस में रखो ताकि सुबह 4 बजे के मेडिटेशन करें। तो 200-250 मेले बाबा ने करवाया, ऐसे प्रेरणा दिया, ऐसे चित्र बन गए, डी एडिक्शन का बन गए, पॉजिटिव हेल्थ का बन गए, स्ट्रेस का बन गए, कुछ रिसर्च का बन गए, और मेला तैयार हो गया। तो सारा बाबा काम कराता है, हम उमंग उत्साह में रहेंगे, हम उमंग उत्साह में रहें। भाई भट्टी करने आए हैं, कहाँ आए हैं, ज्ञान सरोवर में आए हैं, बाबा की भूमि है, हमको बाबा करके ही जाना है। सुबह उठ करके बाबा से बातें करें, रूह रिहान करें, तो उसी तरह बाबा से रूह रिहान करते थे। कोई भी डॉक्टर को इनलैंड मिलता नहीं था, पोस्ट कार्ड 10 पैसे का, तो पता नहीं कितने होगा। तो इस तरह से आज तो साधन हो गया है, पहले कोई साधन नहीं था। और सेवाएं बाबा, जैसे आज दिल की बात हुई ना, दिल की बात, दिमाग की बात, दिल दे दिया बाबा आपसे सब कुछ कराएगा, क्योंकि विश्व का महाराजन महारानी बनाने आया है। तो ये छोटी सी बात है, क्या बड़ी बात है, फरिश्ता तो उसके आगे, विश्व महाराजन के आगे छोटी सी बात है ना। तो इसलिए वो मंग उषा में कौन मिला है, किसकी डायरेक्शन है, क्या दे रहा है, बातें करते रहो अपने से, बाबा से बातें करो, बाबा आपको कोई और नहीं मिला, मेरे को ही चुना है, तो आप ही जवाब देगा, बच्चे तुम ही लायक है, उसको पता है, हमको पता नहीं है। तो ये जो काम कराया है वो बाबा ने कराया है, हमको तो कुछ आता जाता नहीं है। ओम शांति।
थैंक यू भाई साहब, वंडरफुल। कहां से यात्रा शुरू करके कहां तक बाबा ने पहुंचाई, ये बहुत अनोखी बातें आपने सुनाई, ये अनछुए पहलू हैं। आपसे इतने समय से मुलाकात भी होती है, पर आपके इस तरह की लाइफ शुरू की है, बाबा की सेवाएं इस स्तर से आरंभ की है, ये हमें आज, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, तो वंडरफुल। बाबा भी कमाल है और आप बाबा के बच्चे भी कमाल हैं। अभी मैं भाई साहब से, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से प्रश्न पूछूंगा कि भाई साहब, ये जो दिलवाले शब्द आप हार्ट के पेशेंट को दिलवाले टाइटल देते हैं एकदम से, और हमने देखा बड़ा बाप दादा आपसे क्या कहें, जैसे कि बहुत घरेलू थे आपसे, जैसे भगवान जैसे हम डायमंड हॉल में देखते थे, जैसे उन्होंने ही, बाबा ने ही हार्ट का ये कैट के प्रोग्राम को अपने हाथ में लिया हुआ था, प्रमोट करना आपको, और माना प्रोग्राम को भी प्रमोट करना और आपको उमंग उत्साह दिलाना, काफी बाप दादा की काफी प्रेरणाएं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं। तो बाबा आपसे डायरेक्टली क्या बताते थे, और ये दिल वाले भी शब्द आई थिंक बाबा ने दिया हुआ है, मैं ऐसा समझता हूँ, आप बताएंगे कुछ इसके बारे। हक रखते थे, जैसे कैड वाले ज्यादा ही हक रखते थे बाप दादा।
ओम शांति। देखिए दिल वाला जो पहला जो ग्रुप था ना, फरवरी 98 का ग्रुप था, मुझे याद है उसमें पांच ही पेशेंट आए थे, सिर्फ पांच पेशेंट आए थे, और वो भी ऐसे नहीं कि, हालांकि हमारा जो कोलैबोरेशन हुआ था वो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से हुआ था, जिसमें मैं पढ़ा था, MBBS किया था, और अहमदाबाद में BJ मेडिकल कॉलेज, UN मेहता हार्ट का हॉस्पिटल था, और JJ हॉस्पिटल ग्रांड मेडिकल कॉलेज, तो उनसे एम्स से भी हुआ था शुरू में, तो उनका कहा था कि हम पेशेंट वहां से भेजेंगे, पर किसी ने एक पेशेंट भी नहीं भेजा। वो कहते रहे हम बाबू रोड में आएंगे, आपके यहाँ क्या फैसिलिटी है पेशेंट संभालने की, आपके यहाँ कोई ICU नहीं है, कुछ भी तो है नहीं, तो पेशेंट आएंगे वो, उनको कुछ हो गया तो, वो मेरे को दिल्ली में डॉक्टर मनचंदा थे हार्ट वाले, कहते नहीं डॉक्टर साहब वहां से ना उसको आप एक डॉक्टर भेजो तो पेशेंट को लेके ट्रेन में लेके आएगा। मैंने कहा हम डॉक्टर, हमारे पास कितने डॉक्टर हैं, दो ही तो डॉक्टर थे, एक महेश था, डॉक्टर महेश है, डॉक्टर सविता अस्पताल में, दो ही MBBS डॉक्टर थे, तो वो भी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होते थे क्योंकि इंटर्नशिप के बाद सीधे बाबा घर में आ गए थे, तो मतलब ऐसी हालत होती थी। तो बाबा जब ये पेशेंट आए, ये भी हमारे पास ऐसे ही कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ज्ञान सरोवर में, वो हमने हाथ से बना के कागज लगाया था कि हमारा प्रोग्राम हाथ से बना के यहाँ बॉर्डर पर लगाया, तो वो कॉन्फ्रेंस में आते ना भाई, कोई यहाँ पर सेमिनार वगैरह होते थे, उसमें देखा दो तीन हार्ट पेशेंट तो ऐसे ही आए जो ज्ञान सरोवर में आए थे, और दो तीन पेशेंट मेरे पास अपने OPD से आ गए, तो पांच पेशेंट थे। और दादी को मैं, दादी मिलती थी एक ग्रुप से, हम पांच पेशेंट, पांच उनके हस्बैंड वाइफ, तो उनसे मिलाया दादी से, दादी मैंने कहा दादी हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है नहीं, दिलाराम बाप के दिल वाले बच्चे हैं, है ना, तो दादी ने नाम दिया था, बड़ी दादी ने, दिल वाले बच्चे। वो दादी की एंजियोग्राफी देखती थी, इनकी ब्लॉक इतने ब्लॉक, दादी कहा इतने ब्लॉक, छह एक हमारे होते थे, आठ ब्लॉक वाला पेशेंट बुला लिया आपने, दादी दिलाराम बैठे ना, तो ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे पेशेंट आते थे, और ऐसा होता था उस समय कुछ प्रोग्राम तो था ही नहीं, कुछ पता ही नहीं था मेरे को भी, मैंने कोई प्रोग्राम किए थे कभी क्या, मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किए थे, तो मैं पूछता था बाबा से, कागज पेंसिल सुबह सुबह अमृत लेके बैठ जाता था, अमृत योग के बाद, बाबा आप लिखवाओ ना क्या करना, अभी क्या करना, अभी क्या करना, अभी नाश्ता क्या देना, बाबा नाश्ते में क्या देना, कैसे करना, तो बाबा एक बार लिखवाता, बच्चे ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर उनको वॉकिंग कराना, वॉकिंग कराते थे ऐसे बोलना उनको, फिर ऐसे बाबा जैसे मुझसे बात कर रहा है ऐसे करता था। और उसके पीछे भी पहले आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था मुझे 5 साल ज्ञान योग करता रहा, सूक्ष्म का अनुभव भी नहीं हुआ, संदेशियां आती थी सुनाती थी, मैं कहती क्या क्या बोलती कैसे बोलती है, तो मैं सूक्ष्म, मेरे को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ एक बार हार्ट यहीं पे मधुबन में, ज्ञान विज्ञान भवन 6 नंबर रूम है ना जो ऊपर, मेरे को हार्ट वो हुआ था अपेंडिसाइटिस, तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा था, रिएक्शन हो गई, हार्ट बंद हो गया। प्रताप भाई और मित्तल और रूपा और ये कुलविंदर आ गए वहां पर लेके बैग, और हमें याद है हमने पालनपुर से एक बैग खरीदा था इमरजेंसी बैग, तो वो उठा के ले आए थे, तो उठा के ले आए और मेरे को इंजेक्शन लगा दिया। अब मैं जो है जैसे वो इंजेक्शन लगाया, टेस्ट डोज रिएक्शन हुई, जब ये लगाया तो मेरे को, मैं तो छत के पास पहुंच गया। तो मैंने प्रताप भाई को बोला, मैं प्रताप भाई मैं जा रहा हूं, गला घुट रहा था मेरा, गला घुट रहा था, तो मैंने और थोड़ी देर में छत के पास में पहुंच गया। ऊपर से देखा मैं नीचे मेरी बॉडी को देखा, बेड पे पड़ी है, और गला मेरा एक हाथ यहाँ पे था, एक हाथ में वो हाँसी था, इसमें इंजेक्शन लग रहा था, तो होते होते हो गया था। तो मैं ऊपर छत पे देखा, सब वो परेशान से डॉक्टर नर्सिस दिख रहा था, परेशानी दिखाई दे रही थी, कोई एमडी डॉक्टर जा रहा हो अचानक छोड़ के, और वो भी मतलब ज्ञान विज्ञान भवन में। तो मैं तो उधर देखा जा रहा नहीं, खिड़की दरवाजे खुले थे, इधर से नहीं गया, छत में से निकल गया, ऊपर आसमान में जा रहा हूं। ऊपर पहुंच गया और वहां देखा तो ब्रह्मा बाबा जैसे नहीं, वो कृष्ण जी पे बैठे थे ना बाबा, वहां बैठे, वहां लग रहा है वो मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मेरे को पता नहीं संकल्पों से बातचीत कैसे होती, मुझे क्या पता कैसे बातचीत होती। 29 अक्टूबर 1991 की बात है, अभी 3-4 दिन हो गए, कल की बात है, परसों की 29 अक्टूबर की बात है। तो मैं उस दिन अपना बर्थडे मनाता हूँ दोबारा से ना, तो 29 अक्टूबर को जो है मेरे को बाबा ऐसे, मेरे को वैसे लगी बाबा ऐसे करे हाथ से, जैसे मैंने कहा बाबा कहते बच्चे कहाँ जा रहे हो, ऐसे मुझे मतलब ऐसा लग रहा सच में बाबा मुझे बोल रहे हैं, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे थे, बाबा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा बाबा मैं तो आपके पास आ रहा हूँ। तो बाबा कहते जैसे मैंने भी होठ से नहीं बोला, अंदर अंदर संकल्प। तो फिर बाबा कहते नहीं बच्चे अभी आपका समय नहीं हुआ, अभी आपको बहुत सेवा करनी, वापस जाओ, है ना। तो मैं तुरंत अपने अपने बेड पे अपने वापस आ गया, बॉडी में आ गया, और बॉडी में आया तो मेरा दिल धक 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 बड़ी तेजी से कर रहा था, क्योंकि उन्होंने रिवाइव किया था और एड्रेनल का इंजेक्शन लगाया था यहीं पर ही, तो उससे हार्ट की धड़कन बहुत तेज थी। तो मैं 8:30 का टाइम होगा लगभग, जब मेरे को जब इंजेक्शन लगा 8:30 घड़ी सामने थी, तो 8:30 बजे थे उस रात के, तो तभी मेरे को हुआ था, पता नहीं कितनी देर लगी होगी ऊपर नीचे जाने जाने, मुझे पता नहीं। तो नीचे आया और नीचे आके फिर मैं बेहोश हो गया, फिर 11:30 बजे मुझे होश आई, 11:15 बजे होश आई, लाल लाइट हो रखी थी कमरे में, और वो मेरे निर्भय मेरे माथे पे आता कैसे बैठे थे 11:15 बजे रात को, और बाकी सब लोग मेडिटेशन कर रहे थे, क्योंकि मेरे को प्रॉपर होश नहीं आई थी तब तक। तो फिर जो है मेरे को बताया डॉक्टर ने, उस समय आप जब बेहोश थे ना, तो उसमें आपके मुख से निकल रहा था आप मुझे ये दवाई दे दो, अभी दवाई नंबर 3 पे दवाई रखी है, एड्रेनल वो लगा दो, वो लगा दो। हम तो टेंशन में थे, आपके मुंह से निकल रहा था, बाबा ही बोल रहा है आपके मुख से, तो हम लगाए जा रहे थे, तो मैं बच गया। मतलब ये जो है बाबा ने उस समय मुझे बचाया। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मेरा ये वाला हुआ था, बाबा से संकल्पों के द्वारा बातचीत कैसे होती तब मेरे को हुआ, और उसके बाद मुझे वरदान मिल गया सूक्ष्म वेदन में जाने का, उस दिन से है ना, मोटी बुद्धि थी ना, तो फिर ऐसे तो हर चीज में लॉजिक चाहिए था, लॉजिक मीन्स आर्ग्यूमेंट चाहिए था, ये चीज ऐसे कैसे हो सकती है, ऐसे कैसे हो सकती है, तो फिर भावना आई। चलिए एक मिनट, तो मुझे ये पहली बार वो अनुभव हुआ, और उसके बाद तो फिर मुझे जैसे वरदान ही मिल गया सूक्ष्म वेतन का ना, जैसे तो जैसे उसके बाद बताया ना 95 में मुझे फिर सूक्ष्म वेतन में बाबा से वो अनुभव हुआ था, तो ये प्रोग्राम भी बन गया, और वो जब पास हुआ अक्टूबर 97 में प्रोग्राम पास हुआ, फिर दादी ने मुझे जो है ये बात कही कि गुप्ता जी पहले वो प्रोग्राम जो ये जो बना ना, जब 27 दिसंबर को पास, मतलब अक्टूबर में पास हुआ, 27 दिसंबर को लॉन्च हुआ ये प्रोग्राम, तीनों दादियां थी, तीनों बड़े भाई थे अपने, जगदीश भाई भी शायद उसमें थे, हाँ जगदीश भाई भी आए थे, विदेश की बहनें थी, जगदीश मोहिनी बहन थी, जयंती बहन थी, सभी लोग बैठे थे हमारे ग्लोबल ऑडिटोरियम में, जो हॉस्पिटल का ऑडिटोरियम, ग्लोबल ऑडिटोरियम नहीं है ना, तो पास हो वो सब, सबके सामने प्रेजेंट हो गया, और सबने लॉन्च हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लोग भी आए हुए थे। 28 तारीख को दादी मुझे इशारा करती है मुरली के बाद मेरे से मिलना, तो मैं दादी को मीटिंग रूम में ना, जो मधुबन में पांडवन में, वहां दादी बैठी और मैं बैठा, दो जने दादी बैठी और मैं बैठा, गुप्ता जी अभी तो प्रोग्राम लॉन्च हो गया, अभी कब शुरू कर रहे हो। मैंने कहा दादी 27 फरवरी को ही करेंगे, उसी दिन मुझे विजन हुई थी, मतलब वही दिन करेंगे शुरू, 2 महीने बाकी हैं हमारे के 2 महीने। अच्छा हार्ट की बीमारी होती किसको है दादी? जो जल्दीबाजी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं। अच्छा आप होते हो कभी कभी गुस्सा, जल्दीबाजी करते हो, चिंता करते हो? मेरे मुंह की तरह बोलती दादी, कभी कभी तो होते हैं ना। कभी पेशेंट आया मरने वाला होता है, डॉक्टर सपोर्ट नहीं करते, नर्सेस ठीक से काम नहीं करती, अब क्या करें? वो तो उस समय तो बोलना ही पड़ता है। तो अच्छा होते हो, अच्छा कैसे करते हो? अच्छा होते हो, दादी होता हूं। अच्छा 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 और क्या चीज से होता है दादी? जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, आप रोज करते हो? मैंने कहा दादी वो तो रोज करता। अच्छा बातें करते करते हो, बातें करते करते चलते हो? कोशिश करता हूँ बाबा की याद में, फिर भी कभी कोई मिलता है तो बात तो करनी पड़ती है। अच्छा बातें करते करते हो, फिर खान पान का भी कुछ होता है? मैंने कहा दादी होता ना, खान पान का भी होता है, जो खाते हैं मीठा खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, पराठे पकौड़े खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, आप खाते हैं गुरुवार का भोग खाते हैं? दादी खाता हूँ ना गुरुवार का भोग, तो बाबा का भोग खाता है, मैं टोली देती हूँ खाते हो? मैंने कहा जरूर खाता हूँ दादी, आप दो हम ना खाएं कैसे हो सकता? कहते अच्छा तो आप खाते हो तो वो भी तो खाएंगे ना। तो मैंने कहा दादी गुरुवार का भोग नहीं खाना क्या? कहते यहां से खाओ ना, यहां से क्या खाने का? टोली भी कहती यहां से, दादी के दादी बोल रही मुझे, आप सोचो। टोली भी कहती यहां से खाओ ना, यहां से क्यों खाते हो? अच्छा मैंने कहा दादी मेरे को थोड़ा डायबिटीज हो रखी है, मेरे को थोड़ा ना हार्ट की बीमारी, मेरे को तो दूसरी वाली हार्ट की बीमारी थी। पर तुम खाओगे तो वो भी तो खाएंगे, उनका भी दिल करेगा ना गुरुवार को भोग खाने को, टोली खाने को करेगा ना, उनको टोली मिलेगी, गुरुवार को भोग तो खाएंगे ना वो भी। फिर दादी नहीं खाना, फिर दोबारा कंफर्म किया नहीं खाना, नहीं खाना, यहां से खाना। तो दादी ने मुझे मैं सोचता था बताना है, भाषण करना क्या बड़ी है? कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले तुमको धारण करना है, तो बोल में आवाज दम नहीं आएगा, लोग कोई सुनेंगे नहीं। और एक और उस पे सोने पे सुहाग कर दिया, अगर उनको कुछ होगा पाप आपको लगेगा। तो मैंने कहा दादी मुझे पाप क्यों लगेगा? कहती आप कह रहे हो ना बाईपास नहीं कराओ, आप कह रहे हो ना ये कि नहीं कराओ, तो नहीं हो गया कुछ हो गया तो तकलीफ हो जाएगी, तो पाप तो आपको लगा। तो परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा ना, आप परिवर्तन नहीं कर पाए तो वो कैसे कंट्रोल करें? आप अपनी जीभ को कंट्रोल वो कैसे कर लेंगे? एक दादी ने ये बात कही। तो फिर कहती अब 2 महीने बाकी है, आज से अभी से शुरू हो जाओ, ना जल्दी करनी, ना चिंता, ना गुस्सा, ना कोई बात मन में रखनी है, रोज सारी सारी बात लिखना शुरू करो, बाबा को चिट्ठी लिखना शुरू करो, हर बात बाबा को बताना शुरू करो, कुछ भी अंदर रहना नहीं चाहिए। चलो एक बात और बता देता हूँ इससे पहले। अब मेरे को तो हार्ट की बीमारी थी नहीं, मैं तो लॉन टेनिस खेलता था, बैडमिंटन क्रिकेट खेलता था, अच्छा प्लेयर था, कॉलेज में भी कॉलेज को रिप्रेजेंट दिल्ली में किया हुआ था मोहम्मदाबाद में। अब मुझे नवंबर 1996 में मुझे छाती में दर्द हो गया, घबराहट हो गई, पसीना आ गया बड़ी जोर से, 37 साल की उम्र में आ गया। तो मैं तो अभी ईसीजी कराई, ईसीजी बिल्कुल खराब आ गया। अब फिर वो दिखाया, मेरे को एस्कॉर्ट्स में भेजा मैंने अपना ईसीजी, तो उन्होंने कहा नहीं तुरंत लेके आ जाओ। आज मैंने कहा मैं नहीं जाता हूँ, दिल्ली नहीं जाऊंगा। फिर अहमदाबाद में बनारस एक साथ गए, डॉक्टर शरद दवे को दिखाया, कितने डॉक्टर्स को इको करा, किसको समझ ही नहीं आया। फिर बॉम्बे गए, बॉम्बे में एंजियोग्राफी कराई, एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल आ गई ना, डॉक्टर गांधी से कराई थी, एमजे गांधी से कराई थी, इको भी कराया, उनको पता समझ नहीं आया। और मेरी जान निकलती थी रोज रोज, मेरी ना रात को इरेगुलर हार्ट बीट, मेरे हार्ट नब्ज ऐसी रहती थी, नब्ज पे हाथ रहता था हमेशा, अभी गया, इतनी जोर से भूकंप आता था, मतलब सब कुछ टॉपसी टर्वी हो जाता था, शायद आता ऐसे होता था, धड़कन बहुत तेज, एंजाइना होता था बहुत जोर से, सीवियर हार्ट में दर्द होता। हार्ट अटैक वाले को क्या होता है, जैसा मुझे होता था ऐसा किसको भी नहीं होता होगा। और फिर मैं उदयपुर में कॉन्फ्रेंस थी इको की, तो मेरा एक फ्रेंड था यूएस में, मायो में, उसने देखा मेरा शक्ल, देखी मरी मरी से शक्ल देखी, तो कहता डॉक्टर गुप्ता क्या हो गया, आप तो बहुत हमेशा मुंग उत्साह में रहते जब मिलते हो, इस बार क्या बात, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? मैं क्या ऐसा ऐसा होता है, सारी रात सो नहीं पाता हूँ, मुश्किल से आया हूँ, अभी भी एक साथ में किसी को लेके गया था। कहता लेट मी सी यूर हार्ट, वो इकोकार्डियोग्राफर था बहुत वर्ल्ड फेमस, तो उसने मेरा हार्ट देखा वहीं पे मशीन, कॉन्फ्रेंस में इको मशीन आई हुई थी, देखे कहते हैं तुम्हें तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, तुम्हारे तो हार्ट की दीवारें बहुत मोटी मोटी हो गई हैं, घर में किसी को थी क्या? हाँ मेरे पिताजी को थी। अच्छा ये तो तुम्हारी वही जीन तुम्हारे अंदर आ गया, और वो तुम्हारी हार्ट की दीवारें बहुत मोटी हो गई, ऐसा ऐसा हो गया, और रास्ता ब्लॉक हो गया पूरा ही, रास्ता बड़ी नस होती है बंद हो गई पूरी हो रही, तुम्हारा तो ये है क्या इस, तुम्हारा कभी भी है ना मेरी, मैं तो सारे वर्ल्ड से डॉक्टर पेशेंट दिखाने आते हैं, ये वाले दो साल से तो कुछ ज्यादा जीता ही नहीं है ये वाली बीमारी वाला, मेरे को सोने पर सुहागा उसने ऐसा लगा दिया कि अभी तुम जाओ, तुम्हारा अभी जाने का समय आ गया। 97 फरवरी 97 की बात है। मैं क्या करूं, मैंने कहा भगवान मेरे को माउंट आबू बुला के इसलिए बुलाया था ऊपर जाऊं। मैं घर आया, वहां पर वापिस आया, यहीं से कार लेके गया था उदयपुर, तो कार आ गया यहां पर आके। मैंने दादी को कहा, दादी ऐसे से, उसने बताया जो बीमारी है, कहते नहीं ऐसा करो हम, मैं मोहिनी बहन को बोलती हूँ आपका ऑपरेशन कुछ में बताया ना, ऑपरेशन वहां करा देंगे। दादी मेरे पास तो इतने वो नहीं है, सब साधन नहीं होंगे, नहीं नहीं वो सब। फिर मैंने दादी एक बार गुलजार दादी साथ में बैठी थी, दादी के पास गुल जाओ बाबा से पूछ के आओ क्या करे डॉक्टर। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये तो बाबा ने कोई बीमारी इसलिए नहीं दी है, योग का प्रयोग करने के लिए, अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए दी है। खूब मुरलियां पढ़ो और एक एक मुरली 69 से लेकर 97 तक की मुरलियां ले लो, यहां से कोर्स की किताब ले लो अव्यक्त मुरलियां, और एक एक मुरली का एक एक लाइन को महसूस करो। मैं ऐसे ही करता था, कमेंट्री से योग करता था, सुबह अमृत वेले मैं यहां जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, यहां मतलब जैसे करते है ना, ऐसे ही अनुभव करता था। होता कुछ परिवर्तन तो होता नहीं था, तो एक एक मुरली की लाइन को महसूस करो, रिवाइज एंड रियलाइज महसूस करो, गहराई से महसूस करो, जियो उसको, उस लाइन को जियो, यही योग है। मैंने शुरू कर दिया और बाबा ने कहा कि बच्चे एक एक बात लिख के, तो बचपन से लेकर 4 साल की उम्र से जो भी कुछ याद लिख के जो भी कहीं सूक्ष्म बातें भी लिख के बाबा को दे दो। मैं दिन में 10-10 बार लेटर लिखता था, निकालता रहता गंदगी सारी, सफाई करता था, लिख के साइन करके बाबा को दिया और फाड़ के डस्टबिन डाला। फिर थोड़ी देर में फिर कुछ बात मन में आई, फिर लिखा, फिर ऐसे 10-10 बार मेरी डस्टबिन पास में रखी रहती थी, और मुरलियां सारा दिन पढ़ना, एक कोई समय नहीं था, सारी रात भी पढ़ता, रात को भी जबरदस्ती में जब तकलीफ होती ना तो बाबा को याद करता था ऊपर, और याद करता तो मेरे को करंट मिलती, हार्ट भी ठीक हो जाती, दर्द कम होता, मैं लेट जाता, फिर मेरे को दर्द शुरू हो जाता, धड़कन फिर इरेगुलर हो जाती, फिर उठ के बैठ जाता है, सारी रात योग होता था। तो ऐसे करते करते कर 3 महीने में दर्द खत्म, कम हो गया, और फिर सितंबर में फिर दोबारा वो डॉक्टर आया, तब तक तो बिल्कुल ठीक हो गया था, हमारी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस थी तभी हार्ट की, तो वो डॉक्टर फिर आया हुआ था, कहता डॉक्टर गुप्ता यू आर लुकिंग वेरी वेरी ब्राइट, कुछ कराया क्या आपने? मैंने कुछ नहीं कराया, मैं तो कहता बट यू आर लुकिंग ब्राइट, लेट मी सी योर हार्ट। तो हार्ट देखा तो मेरे हार्ट की दीवारें जो 21 मिलीमीटर मोटी हो गई थी, 21 मिलीमीटर इतनी मोटी हो गई थी, एक इंच से भी ज्यादा, 1 इंच के आसपास, वो वापस नॉर्मल हो गई थी, 10 मिलीमीटर हो गई थी। मैंने योग का प्रयोग क्या होता है, मेरे को विश्वास नहीं होता था भगवान ने ऐसा किया, वो ये वैसे बीमारी ठीक ब्लॉकेज खुल जाएगी, मेरे को कहां पता, मैं तो सोचता है ऐसे तो पता नहीं भगवान ने मेरे को कहां लाइन पे लगा दिया, ऐसे अंदर से कभी कभी बोलता था, क्योंकि साइंस वाले मानते नहीं ज्यादा बातों को, वो तो विश्वास प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। तो मेरे फ्रेंड भी कहते पागल है क्या, मेंटल हो गया क्या, ऐसे होता है कभी क्या, कभी कॉन्फ्रेंस में जाते ना, कभी शेयर करता किससे, पागल हो गया, पागल खाने जाना क्या, आगरा में जाना क्या, मैंने किसको बताऊं। तो फिर मेरे को खुद को जब हुआ ना विश्वास हुआ, तो अथॉरिटी बना, योग करना तब आया मेरे को, रिवाइज एंड रियलाइज, मुरली की एक एक लाइन, इसने मेरी जेब में मुरली रहती है, मैं एक एक लाइन को सुबह से कितनी बार 4 बार मुरली पढ़ चुका हूं, एक एक लाइन को महसूस करता हूं ना, यही तरीका दिल वाले इस्तेमाल करते हैं। वो बनना है, मुरली सुनने के लिए नहीं, बनने के लिए है ना, परिवर्तन करने के लिए, तो उससे लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ। तो ये दिल वाले शब्द बाबा का मतलब दादी का दिया हुआ है, और बाबा ने फिर बाबा इसके लिए कैसे सारी डायरेक्शन देते थे समय समय पर, मेरे को पता नहीं था, मैं लिखता था प्रोग्राम, बाबा से पूछता था बाबा क्या करना है कैसे खाना, तो मैं बाबा कहते ये खिला देना सुबह, अंकुरित खिला देना, ये कौन कौन सा अंकुरित खिलाना है बाबा बताएगा, दलिया बनाना क्या कैसे दलिया बनाना बाबा बताएगा, कुछ क्या देना है दूध देना है बाबा बताएगा, फिर बाबा क्या करेंगे, अच्छा बच्चे 11-12 बजे 11:30 उनको फल खिला देना, फिर क्या करेंगे दोपहर में, बच्चे ऐसे करना, ये देना, फिर ये देना, फिर ये देना। शाम को क्या करेंगे? शाम को क्या करना? ऐसे करना। फिर रात को क्या करेंगे? ऐसे करना। कोई डाइट चार्ट हमारा कोई किसी डाइटिशियन ने नहीं बनाया हुआ, बाबा ने बनाया। और फिर जो है उसको, जब मैं लच्छू दादी से पूछा ना, कहते बाबा की दिनचर्या ऐसी थी, बाबा इस तरह से करते थे।
वेरी गुड।
सारा बताया ना, तो मतलब सारा जो प्रोग्राम जो है, ये दिल वालों का प्रोग्राम दिलाराम ने बनवाया, बाबा ने बनवाया, मेरा इसमें एक पैसा भी, परसेंट भी कंट्रीब्यूशन नहीं है कुछ भी बात बनाने में। कुछ भी चाहे स्लाइड बनाना हो, कुछ भी करना हो, कुछ भी चीज करनी हो, बाबा ने बताया, बाबा ने कराया। मैं थक जाता था, एक लास्ट बात टाइम मैंने बोल दिया, लास्ट बात एक और बता देता हूं। मैं बहुत थक जाता था, थक जाता मैं ना, दिन में ही पेशेंट दिखता था, डॉक्टर कोई होते नहीं थे, मेरे को ही केस शीट लिखना, मेरे को ही सारा काम करना, लेक्चर भी देना। शीलू बहन का क्लास चल रहा होता था, मैं पीछे बैठ के ट्रांसपेरेंसी बना रहा होता था, दोपहर में जो लेक्चर देना सोच तो उसमें करता था। तो मैं बहुत, और फिर रात को भी वो 5-10 पेशेंट आते थे, वही मेरे को थका देते थे। इस कमरे से बाहर निकला, देख के आया, इसको तकलीफ हो रही, फिर इसको तकलीफ हो रही, फिर इसको तकलीफ हो रही, इसको तकलीफ हो रही। सारी रात डांस करता था, दिन में पेशेंट देखना, रात को डांस करना कमरों में, है ना। कभी कभी इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी में भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी देखने जाना पड़ता। तो मेरी हाथ में 3 बजे अपने कमरे में आया, एक बार की बात है 3 बजे कमरे में आया, बस 1 मिनट नहीं सोया था। तो मैंने एकदम शरीर दर्द, सिर भी दर्द हो रहा, बॉडी भी दर्द, सब कुछ दर्द हो रहा। तो मैंने कहा बाबा, ऊपर की बात है, माउंट आबू ग्लोबल अस्पताल ऊपर हमारा P3 वार्ड था, वहां पे रखते थे पेशेंट। तो मैंने कहा बाबा, आज तो शरीर में पूरा दर्द हो रहा है, सिर भी दुख रहा है, मैं आज कुछ नहीं कर पाऊंगा, 4 बजे योग कराने जाना था। तो मैंने कहा बाबा, एक दादी ने मुझे कहा था, एक बार दादी ने बाबा की फोटो देख के कहती, बाबा मैं जब थक जाती हूँ ना गुप्ता जी, तो बाबा मेरी मालिश कर देता है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। एक बार दादी ने क्या करते, टोली नहीं बांटते हैं जब दादी से पार्टी मिलती है, तो दादी ऐसे ऐसे करके देती है, टोली उठा उठा, बहन जी वो मुन्नी बहन कहती ना, मैं देती हूँ दादी, आप ऐसे दे दो। नहीं नहीं, मैं खुद दे दूंगी। तो मैंने कहा दादी, 2000 बार मैं ऐसे करूं तो मेरे तो हाथ ही दुख जाए, आपका हाथ नहीं दुखता? कहते हाँ दुखता है। कहते फिर मैंने क्या क्या करती हो, क्या करती हो फिर आप? बाबा मेरी मालिश कर देता। तो मैंने कहा बाबा, आप दादी की मालिश, मैं बाबा की फोटो देख बोलता हूँ, बाबा आप मेरी दादी की मालिश मेरी नहीं कर सकते हो? तो बाबा ने क्या किया, वही बैठे बैठे बेड पे बैठा हूं, और वो बाबा अंदर से ऐसी कुछ शुरू हुआ, अंदर से ऐसी की ताकत शुरू हुई, ऊपर मुख में हुई, सिर में हुई, ऐसे ऐसे हो गया, सारा शरीर में से मुश्किल से आधा मिनट लगा हुआ सारा शरीर फूल जैसा हो गया, एकदम सारी थकावट गायब। और थोड़ी देर में फिर पेशेंट का रिलेटिव बुलाने आ गया, डॉक्टर साहब उसकी तबीयत खराब हुई, उधर चला गया, फिर सारा दिन काम किया पर जरा भी थकावट नहीं। तो ये बाबा का मैजिक है, और बाबा ने अनुभव की अथॉरिटी बनकर क्या होता है, खुद अनुभव की अथॉरिटी बनकर जब सारे काम करते हैं तब बाबा डर निकालता है। और दिलाराम, दिलाराम शब्द मेरे को डर लगता था, पांडवन वाले बोलते थे, पांडवन के भाई बहने बोलते, गुप्ता इतने सीरियस पेशेंट को बुलाते हो, किसी कुछ हो गया तो? हमारे अस्पताल वाले ही बोलते थे, एंजियोग्राफी देख के ना, इतने ब्लॉक वाले पेशेंट को बुलाते हैं क्या, किसी कुछ हो गया ब्रह्मा कुमारी का नाम बदनाम होगा, अस्पताल का नाम बदनाम हो जाएगा। तो मैं दादी के पास पहुंच गया, दादी ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं मेरे को, तो आप बाबा, आप बाबा से पूछ के बताओ क्या करूं, मेरे को भी डर तो लगता है कभी कभी कुछ हो गया तो। फैसिलिटी तो अपने पास कुछ थी नहीं ज्यादा, आईसीयू भी नहीं तब तो थी नहीं। तो दादी ने अगले दिन आके मैसेज बताया, बाबा ने बोला है दिलाराम तुम्हारा नाम नहीं है, दिलाराम मेरा नाम है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मेरे लिए मेरे पास पेशेंट आते, तुम्हारे पास नहीं आते, तुम सिर्फ सेवा निमित्त सेवाधारी हो तुम। हाँ, पर एक कोई भी किसी को बुलाते हो उसकी एंजियोग्राफी रिपोर्ट देखते हो ना जब, तो मेरे को दिखा दिया करो पहले, मैं हाँ करूं तो बुलाया करूं, तो नहीं बुलाया करो, है ना। तो तब से मेरा रूटीन हो गया, अमृत वेले योग के बाद मैं देखता हूँ मुरली, वो देखता था रिपोर्ट, और बाबा यस करे ऊपर से तो टिक कर देना, नहीं तो काट देना। तो कई लोग मेरे को क्यों नहीं बुलाया, मैंने कहा मेरे को नहीं पता, आपको छुट्टी नहीं मिली,
आप तुरंत हाँ नहीं बोलते थे, हमने भी देखा, आप कोई भी बात होती थी हाँ मैं बताता हूँ, तुरंत हाँ या ना का जवाब आप नहीं देते,
तो हमेशा बाबा से पूछ के करना। तो फिर बाबा जिम्मेवार है, तो ऐसा बाबा, इसको बोलते दिलाराम, दिल वाला बाबा, सच्चे दिल की पर साहब राजी।
थैंक यू ऐसा। अब तो एक सेशन एक के लिए बहुत कम होगा, अभी ड्रामा अनुसार जो भी है। ठीक भाई साहब, अब आपसे एक प्रश्न था कि आप ऐसे भाग्यशाली हैं भाई साहब कि दीदी दादियों के अंग संग रहे आप, हम सबको बहुत संकल्प चलते हैं कि दादियां इतनी हॉस्पिटल में, दादी इतनी योगिनी और इतनी पवित्र आत्माएं, इतनी पुण्य आत्माएं, फिर ये हॉस्पिटल में इतने समय का जो रहना, तो जैसे एक आम हम सोचते हैं कि फिर हमारा क्या होगा, मीन्स अगर दादियों का ऐसा, तो आपने किस रूप से देखा और आप हर दादी के साथ हॉस्पिटल में आप इतना लंबा समय आपने दादियों के साथ हॉस्पिटल की सेवा में आपने बिताया, तो उससे क्या आपका एक एक्सपीरियंस क्या है उसमें?
अव्यक्त बाप दादा के मैसेज है, बाप दादा का मैसेज है, निर्भय भाई बीमार हुए तो बाबा ने मैसेज दिया कि बड़े बीमार होते हैं तो डॉक्टरों की सेवा के निमित्त बनते हैं। तो रियली वो जितने बार बीमार हुए उतने बार डॉक्टरों की सेवा और नया नया काम हुआ है। फर्स्ट बाईपास सर्जरी कराए तो ग्लोबल बना, सेकंड बाईपास कराए तो ट्रॉमा बना, इस तरह से मतलब कि बाबा ने ये किया। तो दादियों को भी देखा, दादियां कोई अपने विकर्म यहां किया हो उसके कारण बीमार हो ऐसा नहीं है, बीमार थी। मैं एक एक दादी को सुनाऊं तो आपका बहुत टाइम जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, बीमार दादियां होती थी लेकिन उनके चेहरे पर बीमारी का लहर नहीं था। जैसे आज मुझे हेडेक हो जाए तो लोग कहेंगे तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्या है, हेडेक है कुछ है? दादियों कैसा नहीं था कुछ भी, बहुत भयंकर बीमारी हो चेहरा मुस्कुराता हुआ। डॉक्टर्स बोलते थे बनारसी भाई आपके दादियों को ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। हमने क्यों सर, दादियां तंग करती है? बोलते तंग करे तो मुझे खुशी हो, वो मुस्कुराती रहती है, उनके चेहरे से लगता नहीं है कि ये बीमार है। तो मैं किसके ट्रीटमेंट करूं? एक बार की बात है, बड़ी दादी को बीमार थी, वेंटिलेटर पर थी एक महीना, डॉक्टर साहब भी थे, हम लोगों के शाम को मीटिंग होती थी जे कैसे दादी को जल्दी से जल्दी वेंटिलेटर से उतारें और ठीक करें, हम मधुबन ले चले। तो कोई बोल देता था अरे बॉम्बे हॉस्पिटल में एक चेस्ट फिजिशियन है बहुत बड़ा है उसको लाना चाहिए, मेरे को भेज देते थे, गाड़ी लेके मैं जाता था उनको ले आता था बॉम्बे से, वहां आने में अपने हॉस्पिटल में 1.25 घंटा लगता था, तो वो बहुत दूर है, ट्रैफिक होती थी, तो सारा टाइम हम दोनों पीछे बैठते थे और सारा टाइम दादी के बारे में मैं बताता था, दादी ऐसे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, ये सेवा किया है, ये सेवा किया है, इतने दिनों से बीमार है, ये बीमारी है, एक महीना से वेंटिलेटर पर है। वहां हॉस्पिटल आते आते तक उनके उनको बताता था, जब वो दादी के पास आते थे तो कभी दादी को देखते थे, कभी मेरे को देखते थे, मेरे को देखते थे, गुरु के देखते थे। हम बोला कि भाई ये क्या हुआ? तो वो बोलते थे ये भाई 1.5 घंटा बताया है, दादी 1 महीना से वेंटिलेटर पर है, दादी के फेस से नहीं लगता है कि ये वेंटिलेटर पर 1 महीना से, 5 दिन से होंगे, 2 दिन से होंगे, कल इनको वेंटिलेटर पर डाला है। बीमार दादी भी थी, फेस पर नहीं था, कहने का भाव ये है। तो उसी तरह एक दादी की बता रहे हैं, जीभ कटने वाली है, जीभ का कैंसर हो गया, उसको ले गए बॉम्बे हॉस्पिटल में, डॉक्टर अशोक मेहता को दिखाया, उन्होंने कहा कि एडमिट कर दो अपने हॉस्पिटल में, 6th फ्लोर पर अपना सेंटर है, 5th फ्लोर पर उनको एडमिट किया, 6th फ्लोर पर सेंटर पर मैं रात को रहा। सुबह उनका 9 बजे सर्जरी है, मेरे को सुबह फोन करती हैं, बनारसी भाई मेरे पास आप आएंगे 5 बजे? मैं सोचते गया कि शायद दादी डर गई है, बोलेगी कि अरे कैंसर तो हो ही गया, जीभ में फैल ही गया, अभी मरना तो है ही है, छोड़ो ना, ले चलो घर, जितना दिन जिंदा रहेंगे वो रहेंगे, मैं ये सोचते गया। उनके पास जब गया तो क्या बोलती हैं, बनारसी भाई मेरे जीभ तो सर्जरी कर होगा कटेगा, मैं अभी जीभ मेरा ठीक है तो मेरे को सुबह ले चलो क्लास में, मैं आज मुरली पढ़ करके सुनाऊंगी। उनको ये कंप्लेन नहीं हुआ कि मैं बचपन से बोर्डिंग में मैं आई हूं, मैं कोई भूल नहीं किया, कोई पाप नहीं किया और तन मन धन से सेवा किया और आज मेरी जीभ कट रही है, भगवान मेरे को मदद नहीं कर रहा है, ये उलाहना नहीं दिया। बोलते कि मेरी जीभ कटने वाला है, मेरे को सेंटर ले चलो, नीचे मुरली चलती थी, मेरे को नीचे ले चलो और मैं मुरली आज सुना दूं। जीभ कटने के बाद पता नहीं सुनाऊंगी नहीं सुनाऊंगी, पढ़ूंगी नहीं पढ़ूंगी, मेरे को ले चलो सुनाऊं मुरली, कहने का भाव। हम लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई परिस्थिति आती है, बीमार होते हैं तो फट से नेगेटिव संकल्प आता है, अरे इतना हमने तन मन धन से भगवान की मदद किया, भगवान एक छोटी सी बीमारी के लिए मुझे मदद नहीं करता है, खाली लिख देता है मैं बैठा हूं तुम चिंता मत करो। बाबा मदद करता है। तो वो हम दादी को देखा, दादी गुलजार के बारे में हम सुनाएंगे, घड़ी बहुत फास्ट भाग रही
है। नहीं,
तो दादी गुलजार, दादी बीमार थी, उनको बॉम्बे हॉस्पिटल में ब्रिज कैंडी में ले गया, सबसे बड़ा टॉप मोस्ट चेस्ट फिजिशियन उद्वारिया जी हैं, उनको दिखाया, उद्वारिया जी के नाम पर हमने एडमिट किया। उद्वारिया जी कभी भी पेशेंट को 2 मिनट से 3 मिनट से ज्यादा नहीं देते हैं। दादी की ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी चमक चेहरे की, आकर्षण। उद्वारिया जी आते थे, दादी अगर कोर्ट पर लेटी है तो कुर्सी पर बैठ जाते थे, अगर कुर्सी पर दादी बैठी है तो कोर्ट पर वो बैठ जाते थे, और वो कुछ पूछे उसके पहले दादी बोलती है, डॉक्टर जी आप कैसे हैं, डॉक्टर पानी पानी, ये नहीं दादी कंप्लेन सुना रही है, मुझे रात भर दर्द हुआ है, मुझे नींद नहीं आई है, मुझे दर्द था, मुझे ये था, वो नहीं सुना रही है, डॉक्टर जी आप कैसे हो। देखो मैं तो सुना सकती है ना, तो दादियां बीमार जरूर थी, हॉस्पिटल में भी ले गए, ट्रीटमेंट भी हुई, लेकिन सफर नहीं किया। लास्ट लास्ट की बात सुना रहे हैं, गाम देवी में दादी बैठी थी, हम हर महीने 2-3 बार जाते ही थे, कुछ भी होता था तो नीलू बहन बुलाती थी, जाते थे सब, उनकी सेवा में जो नर्सेज बहने थी वो अपने छोटे छोटे काम में बिजी थी, दादी को चेयर पर बैठा दिया था, दादी गहरी चिंतन में थी, मैं गया तो दादी अकेले बैठी थी, तो मैं एक प्लास्टिक चेयर लेके दादी के पास बैठ गया, थोड़ी देर बैठा तो दादी में थोड़ी हलचल हुई, तो हमने पूछा, दादी कोई दर्द है, तो मुस्कुराई, हम क्या सोच रही हो, तो दादी बोलती है, बताओ, हम जी दादी आप बताओ, मैं बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, तो बोलती है कि संसार में कितने लोग दुखी हैं, कितने कष्ट में हैं, इनकी कष्ट को निवारण कैसे हो, मैं ये सोच रही थी, कैसे बाबा से बात करूं कि सबके कष्ट निवारण हो, अपने कष्ट के लिए उनको चिंता नहीं, लास्ट तक कभी ये नहीं कहा मुझे यहां दर्द है, मुझे यहां दर्द है, डॉक्टर आते थे ये करते थे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया गया, उनको बताया गया दादी चलो, अरे बाबा बैठा है ना, बाबा है, ये कुर्सी बाबा की है, मेरी थोड़ी है, और वहां बैठे बैठे यज्ञ का एक एक कोने कोने का ध्यान रखती थी। आप पूछेंगे कोने कोने का कैसे ध्यान रखती थी, यज्ञ में शांतिवन में एक त्रिलोक भवन है, आप सब नाम सुना होगा देखा भी होगा, उसका कुछ पोर्शन फॉरेस्ट में चला गया है, फॉरेस्ट के जमीन में वो बन गया है, जानबूझ के बनाया है, क्योंकि फॉरेस्ट वालों ने हमारे लैंड में बना दिया, तो हमने वो जब माप तौल हुआ तो उनको कहा गया भाई आपने तो मेरे में बना लिया, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे में भी बना लो, जितना हमने बनाया है उतना आप ले लो, मुंह जबानी बात हुई, ऑफिसर अच्छे थे उनकी ट्रांसफर हो गई, दूसरे ऑफिसर आए उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, इसको हम तोड़ेंगे, अब इतना 5-6
बड़ा बिल्डिंग और टूटे तो ब्रह्मा कुमारी का क्या होगा, सोचो। हेडक्वार्टर में 5-6 फ्लोर का बिल्डिंग टूटा, पूरे वर्ल्ड में क्या न्यूज जाएगा? लोग तो बैठे हुए हैं कि थोड़ा कुछ हो तो हम वर्ल्ड न्यूज बना दें, नहीं होता है तभी भी मीडिया बना देती है। तो वो दूसरे दिन बुलडोजर आने वाला था, दादी बोलती है 3 बजे नीलू को उठाती है, नीलू वो जमीन के टुकड़ी है ना, सरकार के साथ समझौता कर लो। अब इस नीलू में समझे नहीं, समझौता कर लो, सम 3-4 बार बोली। फिर मैं वहां था तो मैं 6-7 बजे तैयार होकर जाता था, तो नीलू बहन ने कहा कि दादी कई बार सुबह से बोल रही है जमीन का समझौता कर लो। तो हम बोले हाँ हाँ, एक जमीन वो हमारा त्रिलोक है, वो फॉरेस्ट में है, सरकार की बहुत ये है, उसको तोड़ने का ये है। तो दादी बोलती है कह रही उसको समझौता करो। इतना में हम लोग बात कर रहे हैं, एक कविता बहन का हस्बैंड है हैदराबाद का, वो कविता बहन बहुत बड़ा डॉक्टर, लेकिन दादी बीमार होती थी तो वो आ जाती थी हैदराबाद से। तो उसका हस्बैंड बहुत बड़ा बिजनेसमैन, अमेरिका में उसका मेडिसिन की बिजनेस होती है, हैदराबाद में फैक्ट्री है। वो आया, बोला कि आप लोग क्या बात कर रहे हो? तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, दादी को देखो प्रेरणा आई है इस तरह के। अरे वो चीफ सेक्रेटरी जो जयपुर में है वो मेरा क्लास फेलो है, हम दोनों एक ही रूम में रहे हैं। मैं निर्भय भाई को वहां से बॉम्बे से फोन किया, उन्होंने कहा कि तुरंत अभी फ्लाइट से उसको भेजो, और वो गया सारा पेपर लेकर के गया और उन्होंने स्टे ऑर्डर एक कराया, आज तक वो चल रहा है। मैंने कहने का भाव, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनने की उनको ये नहीं, लेकिन यज्ञ की रक्षा के लिए एक एक सेकंड एक एक पल उनका ध्यान था, ध्यान रखती थी अंत तक। डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन जाता था, कोई भी मीटिंग की बात जाती थी, ध्यान से सुनती थी और डायरेक्शन देती थी। ये कहते थे कि दादी आप चलो, ठीक है यहां तपस्या कर रही हूं, कुटिया में बैठी हूं। तो त्याग वैराग दादियों का, नहीं तो आज किसी को चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया जाए, बीमार चलो बीमार है भाई वहीं पड़ा रहेंगे, लेकिन ले चलो कुर्सी पर बैठे दादी यहां है। ये दादियों का त्याग, दीदी का त्याग, इतने बड़े परिवार के दीदी कितना सिंप्लिसिटी में रहती थी, बीमार होती थी कितना कुछ नहीं, ठीक हो ना, क्या चिंता करते हो, कुछ नहीं। तो इस तरह से हमारी दादियों का, आज हमारी रतन मोहिनी दादी का, अभी एक ही दादी हमारी बच गई उनका सुन लीजिए। एंजियोग्राफी कराया, एक तरफ राइट साइड 100% ब्लॉक, कैल्सिफिकेशन चूना जम गया है, एंजियोप्लास्टिक भी नहीं हो सकता है। एक तरफ 95% ब्लॉक, डॉक्टर को कहा कि भाई ये 95 है इधर, तो ये डाल दो एंजियोप्लास्टिक कर दो। बोलता है कि बहुत बड़ा रिस्क है, इधर अगर थोड़ा एक सेकंड भी अगर ये हुआ तो इधर तो है ही नहीं है, तो दादी टेबल पर ही जाएगी। ये हाल, उनको बॉम्बे ले गया, कितने डॉक्टरों से मिला, सबने कहा कि जैसे दादी चलती है चलाओ, और आज भी दादी चल रही है, अच्छी तरह से चल रही है। मुरली पढ़ने के लिए उनको कितनी शौक है, जाकर के स्टूडियो में मुरली सुनाती है, बोलती है कि वो तैयार नहीं हो सकते हैं तबीयत के कारण, ये के कारण, चलो 10 बजे तैयार हो जाते हैं, नाश्ता करके जाकर के नेट पर स्टूडियो में मुरली सुनाती है। देखो कहने का मेरा भाव है, हमारी दादियां कष्ट के लिए नहीं गई। एक बार की बात है, जानकी दादी बीमार थी, बहुत बीमार थी, उनको बहुत दर्द था। जयंती बहन को हम ले गए अहमदाबाद, तो हम बोला कि कुछ दीदी सुनाओ, तो उन्होंने कहा कि तुम तो दादी के पास रहता है क्या सुनाओ। तो उन्होंने सुनाया कि एक बार दादी बीमार थी, बहुत दर्द था, बेचैन थी, तो गुलजार दादी आई, दृष्टि दिया, उनके सिर पर हाथ रखा, शरीर पर हाथ फेरा, और थोड़े देर में दादी शांत हो गई, जैसे कोई दर्द नहीं है।
तो दादी थोड़ी देर में चली गई अपने रूम में। तो जयंती बहन पूछती, दादी गुलजार दादी आई मतलब बाबा आए और सारा दर्द लेकर चले गए? दादी क्या जवाब देती है, नहीं दर्द है, लेकिन उन्होंने इतना शक्ति दिया, इतना पावर दिया कि वो दर्द है लेकिन मुझे पता नहीं है। कहने का भाव ये है कि हम कुछ भी हो बाबा के हवाले करें, नहीं तो हम लोगों को कुछ होता है तो कहते हैं अरे देखो हम इन लोगों को इतना सेवा किया, आज मुझे बुखार हो गया तो कोई पूछने वाला नहीं है, आज मुझे ये तकलीफ हो गया तो हम इनकी इतनी सेवा किया वो याद आते हैं, और नहीं तो मम्मी याद आएगी, और नहीं तो पप्पा याद आएगा, रिलेटिव याद आएगा। हमारी दादियों को रिलेटिव नहीं याद आता था। हम लोग कभी घर जाने के लिए, हम लोग उन दिनों में 3 साल के बाद छुट्टी मिलती थी दादी के जमाने में घर जाने के लिए, कभी घर जाने की छुट्टी मांगते थे तो दादी क्या अनुभव सुनाती थी, दादी जिस दिन कदम रखी यज्ञ में दोबारा गई नहीं घर में, तो तुम लोग घड़ी घड़ी जाते हो क्या मतलब समर्पण का? मतलब कहने का भाव ये था, यज्ञ के प्रति एकदम समर्पण मैं था। तो बीमारी हो, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा को लाना नहीं, नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं, घड़ी घड़ी बाबा को लाना देते, अरे बाबा आपके लिए इतना किया, हमारे लिए आपने क्या किया? तो ये नहीं, यज्ञ में बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी, आज तो पैसा है, हम तो अहमदाबाद बॉम्बे कहां कहां लेके चले जाते हैं, फ्लाइट में लेके जाते हैं, और नहीं तो फ्लाइट लेके आते हैं फिर लेके जाते हैं। उन दिनों में एक काना पैसा नहीं था यज्ञ में दवाई के लिए, तो क्या होता था, शरीर तो 5 तत्वों का है, बीमार तो होते थे, बाबा से मैसेज लाते थे। एक बार डायरिया हुआ हमारी सील दादी को, या खांसी था तो ठीक ना हो, अभी कहां हम चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं और कहां से दवाई लाएं, बाबा के पास मैसेज गया, बाबा ने वतन से बोला अमरूद आटे में लपेट दो और इसको आग पर पका दो, वो अमरूद खिला दो, वो खिलाया गया, खांसी उस दिन से चली गई। कहने का भाव उसी तरह से, भाई टाइम की मर्यादा आप बता देना, इशारा देना, एक अच्छा एक बात सुना करके बंद करता हूं। उसी तरह से हमारी यीशु दादी बीमार थी, डॉक्टर चले गए देख करके, और हम स्टर्लिन में हम लोग बैठे थे, तो हम बोला कि दादी कुछ आप एक नई बातें सुनाओ जो हमने नहीं सुना है। तो मुस्कुराने लगी, ये सारा दिन बड़ी दादियों के साथ रहता है इसको क्या नहीं पता है, बोले कि एक बात सुनाते हैं। हम लगे अच्छा सुनाइए। दादी ने सुनाया कि हम 4 बहनें बड़ी बहनों को डायरिया था, सुबह स्नान कर रहे हैं सब ये है, तो दादा विश्व रतन जो बाबा का राइट हैंड था, मैनेजर था, तो वो दादा देखे कि 4 बहनों को डायरिया है तो उनसे सहन नहीं होता था, तो सोचने लगे क्या करूं, गरीबी बेगरी पार्ट, गरीबी तो नहीं कहेंगे बेगरी पार्ट, उन्होंने हाथ लगाया खीसे में, मैनेजर थे तो पैसा उनके पास होता था, कुछ पैसा नहीं, इधर लगाया नहीं पैसा, उन्होंने सोचा कि स्नान करने आदमी जाता है तो कपड़े नहीं उतारता है तो कुछ पैसे होते हैं तो अलमारी में रख देते हैं, टेबल पर रख देते हैं, तो चलो कुछ देखें हो सकता है। पूरा रूम अलमारी ढूंढ दिया, 4 पैसा मिला, 4 पैसा मैंने उन दिनों के एक आना होता था, वो एक आना पैसा लेकर के बाजार चले गए, मार्केट में दवाई वाले ने 1 टैबलेट दे दिया, अभी क्या करें, 4 तो मांग नहीं सकते हैं क्योंकि एक आना के एक ही मिलेगा, वो लेके आ गए। अभी वो सोच में पड़ गया कि 1 टैबलेट 4 बहने बीमार है, मैं किसको दूं, एक को दूं तो 3 कहेंगे देखा इनसे इनका बहुत ये है, तो वो सोच में पड़ गया। इतने देर में बाबा आए, बच्चे क्या सोच रहे हो, अत नहीं बाबा हम कुछ नहीं सोचे, अत नहीं आपके चेहरे से लगता आप कुछ सोच रहे हो, बाबा ऐसा है कि 4 बहने सुबह से डायरिया इनको है और स्नान कर रही है, मेरे से देखा नहीं गया, और मैं जेब में हाथ लगाया तो कोई पैसा नहीं, रूम में ढूंढा पूरा रूम ढूंढ लिया 4 पैसा मिला, अब लेकर के मार्केट गया 1 टैबलेट उसने दे दिया, अब मैं सोच रहा हूं कि किसको दूं और किसको न दूं। बोला कि छोटी सी बात के लिए इतना सोचना होता है, लाओ मेरे को दो। बाबा ने अपने हाथ में ले लिया और बोला कि 1 गिलास पानी लाओ, 1 चाकू लाओ,
उसको चार टुकड़ा कर दिया बाबा ने, एक एक टुकड़ा खिला करके पानी पिला दिया, डायरिया ठीक हो गया। तो कहने का भाव है परमात्मा का, बाबा का, शिव बाबा का चमत्कार। हम कहां बैठे हैं, किसके अडॉप्टेड हैं, पहले भी बताया, बाबा के। इसी नशे में रहो, बाबा ने ज्ञान सरोवर में बुलाया है, ज्ञान सरोवर फरिश्ता बनाने के लिए बुलाया है। भट्टी करने नहीं आए हो, भट्टी तो बहुत करते हो, फरिश्ता बनने के लिए आए हैं। ये लक्ष्य रख के जाओ, मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता बन करके ही रहूंगी, जाऊंगी फरिश्ता समझ करके जाना है। जब इतना बहुत ऊंची ये थॉट्स रखेंगे, नेगेटिव छोटी मोटी बातें आएगी नहीं। तो इस तरह से दादियों के पास भी आया, लेकिन दादियों के चेहरे पर नहीं आया। यही कारण, उनको नशा था, बाबा को नशा था अपने भविष्य का। इतना बड़ा बाबा, 6 फीट का, 93 इयर्स एज, और अपने रूम में घुटने के बल चलता था। अरे दादियां, दादी जाती देखी, क्या हो रहा है बाबा, आपको क्या हो गया? अरे बच्ची, तुमको पता है बाबा ये शरीर छोड़ेगा कल, ऐसे श्री कृष्ण बन करके ऐसे घुटनों पर चलेगा। कहां श्री कृष्ण, कहां स्वर्ग, और वो नशा यहीं घूम रहा है। देखिए, एक दिन की बात है, बस पूरा कर रहे हैं भाई। एक दिन की बात है, दोपहर को 2:30 बजा था, बाबा सब लोग, यज्ञ का नियम है, भोजन करके सब अपने अपने रूम में रेस्ट के लिए जाते हैं। सब लोग अपने रेस्ट के लिए अपने रूम में चले गए। बाबा हिस्ट्री हॉल के लाइट और ट्रांस लाइट के, जो लक्ष्मी नारायण का है, लाइट जला के डांस कर रहा है। जानकी दादी कहीं तपस्या कर रही थी, तो सोची कि अब देर हो गया है, चलो हम भी थोड़े रेस्ट करके आए। जा रही थी तो देखा कि आवाज हो रही है, लाइट जल रही है, कौन से गेस्ट आए हैं जरा देखूं, कौन समझा रहा है। तो दादी देख रही है तो बाबा डांस कर रहा है। अरे बच्ची, इधर आओ, इधर आओ, बाबा तो कल ऐसा जाकर के नारायण बनेगा, नारायण बनेगा, उसमें डांस कर रहा है। तो खुमारी, नशा, हम लोगों को भी वो हमारा भविष्य दिखाई दे। अरे ये शरीर छोड़ा और कल तो लक्ष्मी बनूंगी, नारायण बनूंगा, और अपना भविष्य दिखाई दे। ये नहीं छोटी मोटी बात हो गई, उसी में लगे हैं, फलाने ने डांट दिया उसी में लगे हैं। अरे हिसाब किताब चुक तो हुआ, तुम पहले ही डांट लेता ना, क्या फर्क पड़ता है, इंसल्ट करना कल ही कर लेता, आज क्यों किया, अरे कल कर लेता, हिसाब किताब चुक तो। इस तरह से मस्ती में मस्त रहे, हमारे जैसा भाग्य किसी दुनिया में किसी का भी नहीं है। इसलिए अपने भाग्य को गुणगान करें, भगवान को गुणगान करें। अरे हमारे जैसे को तुमने अपना बनाया है, सोचो तो सही। इस तरह से नशे में रहें। ओम शांति। थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू। दिल करता है सुनते ही रहे, है ना, है ना। अब ये शुरुआत है, मैं समझता हूँ इंटरव्यू की।
हाँ, बताता हूँ, दादियों की बात लास्ट में पूरा होने के बाद। बड़ी दादी थी ना, बड़ी दादी माने दादी प्रकाश मुनि जो थी, वो उनको जैसे वैसे बताया भी कि उनको जरा भी उनसे पूछना बीमारी के बारे में उनको पता ना जैसे नहीं लगता था। 102 बुखार हो तो भी हम जाते गिर जाते, दादी कैसे हैं, दादी डॉक्टर मैं तो ठीक हूँ, 102 बुखार है दादी, कहीं दर्द हो रहा है, कोई दर्द नहीं है दादी को। तो फिर हम बड़ी मुश्किल से उसको मतलब दवाई देख के, नहीं नहीं डॉक्टर क्यों बुलाया बिना, बस बस 5-6 बजे बुला लिया, तो 6 बजे मुनिमैन फोन करेगी दादी को बुखार रोके। फिर दादी को मतलब दादी जरा कभी बताती नहीं थी कुछ भी बात को, चुपचाप अंदर ही अंदर समा लेती थी। कमर में दर्द दादी को कभी कभी होता था, दर्द पीछे पकड़ जाता था, वो सहन करना क्या होता है, समाना क्या होता है, वो दादी को मैं देखा। इतनी जोर की दर्द हो रही दादी को, पीछे गर्म पानी की बोतल लाके बैठी और यूं अंदर करके समा रही है, सहन कर रही है, जरा भी चेहरे में फिर मुस्कुरा रही है। तो जरा कोशिश करे कि मैं दादी दर्द हो रहा है, दर्द नहीं है। फिर कभी कहेंगे दादी थोड़ा तो दर्द हो रहा है, इतना सा ऐसे करके इतना सा। तो दादी का मतलब ये था, दादी जब वेंटिलेटर पर थी माउंट वहां पे हॉस्पिटल में BHS में बॉम्बे में, तो ज्यादा बाकी सब लोग जाके सो जाते थे, मैं ही दादी के पास दिन में बैठा रहता था। तो दादी को देखा मैंने, दादी तो ऐसे ना अंदर मुस्कुरा रही है एकदम ऐसे, तो ऐसे मुस्कुरा रही है, आंखें बंद करके मुस्कुरा रही है। बहुत अच्छे से, जैसे कहीं खोई हुई हो। तो मैं दादी को हाथ लगा के मैंने कहा, दादी कहाँ हो? मैंने ऐसे होता ना, ऐसे हाथ लगा, दादी कहाँ हो? ऐसे ऐसे करके हाथ सिर लाके ऐसे ऐसे बोल तो सकती नहीं थी, ट्यूब थी ना गले में, तो ऊपर मतलब दादी उसमें भी वेंटिलेटर पे है, पैरों पे सूजन, हाथों पे सूजन आई हुई है, गले में ट्यूब यहां डली हुई है ना, पर वो अतीन्द्रिय सुख आनंद में थी। मतलब तो दादी की रियल प्रैक्टिकल स्थिति क्या होती है, उनको दुखों का भान नहीं था, तकलीफ का दर्द नहीं होता था, भले शरीर को दुख होता था पर भान नहीं होता था। ऐसे शांतामणि दादी की एक लास्ट बताता हूं। शांतामणि दादी गिर गई नीचे, किसी के उद्घाटन करने गई थी किसी के मकान का, गिर गई, ये हड्डी टूट गई, उल्टे हाथ की हड्डी टूट गई, इतना दर्द होता है हड्डी टूटने पर, और यहां खून निकल रहा है, यहां से खून निकल रहा है, व्हील चेयर पे बैठी है, हमारे हॉस्पिटल में आई, ग्लोबल हॉस्पिटल में माउंट आबू में, मैं तो वहीं 5 साल तो ऊपर ही था, और मुस्कुरा रही है, खून निकल रहा है यहां से खून निकल रहा है, मुस्कुरा रही है जैसे। तो मैंने कहा, दादी क्या हुआ? दादी कहते, कुछ नहीं, थोड़ा गिर गई है ना, हड्डी टूटी हुई हो रही है, मुस्कुरा, मेरे को आज भी भूलता नहीं है दादी का ना वो चेहरा, आज भी चेहरा सामने होता है, मतलब इतनी चोट लगने के बाद, हड्डी टूटने के बाद, यहां खून निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, मुस्कुरा रही है। ये होती टॉलरेंस है ना, सहन करना और समाना क्या होता है, ये दादियों की स्पेशल शक्ति क्या होती है। तो दादियों का जो था ऐसा ही हमको बनना है, बाबा ने जो बनाया ना सिखाया। एक चीज मैं और बता देता हूं लास्ट में, मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ, हैदराबाद वाला जो ऑपरेशन हुआ था ना, तो मेरे कई सारे ना यहाँ पर, एक बार 2005 में ऑपरेशन हुआ, गांठ हो गई थी यहाँ पर, एक ट्यूमर हो गया था, वो दोबारा हो गया, एक साल बाद दोबारा हो गया, फिर 2009 में फिर दोबारा ऑपरेशन कराया हैदराबाद एलवी प्रसाद में, वो डॉक्टर ने पूरी नसी काट दी, पूरी एक नर्व आती है जो यहां से लेके यहां तक सप्लाई देती है। तो ऑपरेशन के बाद मेरी आधा सिर सुन हो गया, अभी भी आधा सिर सुन ही होता है। ऑपरेशन के 3 महीने के बाद लगभग मेरे को क्या हुआ, दर्द होने लगा, बड़ी जोर से करंट मारता ना ऐसे, यहां से करंट यहां से निकलता था और पूरा यूं फैलता, जोर से फैलता। रात को मुझे 11:30 दर्द होना शुरू हुआ, लगभग तीन महीने अभी पूरे होने हुए थे, कुछ होने वाले थे। इसको बोलते ट्राइजेमिनल न्यूरलजिया, एक बीमारी होती है, और इतना जोर से दर्द होता है लोग दीवारों में सिर मारते हैं उसको, मतलब इतनी जोर, बिल्कुल अनबियरेबल पेन होती है, न्यूरोलॉजिक पेन होती है, बहुत सीवियर होती है। अच्छा वो दवाई खाओ उसके तो दिमाग स्लो हो जाता है, उसकी दवाई खाओ है ना, 6 गोली खानी पड़ती है, 2 गोली सुबह, 2 दोपहर 2 शाम, मेमोरी धीरे धीरे गायब होने लगती है। तो मैंने कहा बाबा, मैंने सारे दर्द रफ्ता रहा, दर्द बहुत फील हो रहा था, बाबा को याद करता रहा, 3:30 बजे योग में फिर बैठ गया, फिर बाबा से पूछा, बाबा ये दर्द शुरू हुआ, गोली शुरू करूं क्या? बाबा कहते हैं ये दर्द नहीं है, तुम्हारा टेस्ट है। मैं किस चीज का टेस्ट है बाबा? कहता तुम शांत रहोगे ना, शांत रहोगे ना, अंदर से शांत रहोगे तो दर्द होगा नहीं, जरा उत्तेजित होगे, जरा सा आवेश आएगा ना किसी बात का भी, थोड़ा सा भी सूक्ष्म भी, दर्द शुरू हो जाएगा। मैंने कहा मैं दादा बाबा फिर गोली नहीं खाऊं, अब तुम्हारी मर्जी है, खानी खा लो, नहीं खानी मत खाओ। तो तब से मैं थोड़ा सा भी किसी बात में जल्दीबाजी करूं, थोड़ा आवेश किसी, थोड़ा सा भी दर्द शुरू हो जाता है। तो सेफ्टी वाल लग गया मेरे को, 2009 के बाद सेफ्टी वाल लग गया। तो ये बाबा की गिफ्ट है, बाबा ने गिफ्ट दे दी, एक सेफ्टी वाल लग गया, ये एक हार्ट का लग गया, दो सेफ्टी वाल लग गया। तीसरी मैं बताऊं, मेरी आंख का चश्मा था 16 साल की उम्र से, 3.25 नंबर इसमें, 3 नंबर इसमें, नजदीक का 1.5 इसमें, 1.25 इसमें, और सिलेंड्रिकल एरर भी थी, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें भी दिखती कभी कभी। तो मैं आंखों से परेशान तो था, थोड़ा सा खेल नहीं सकता, कुछ करना चाहूं कुछ, वैसे खेलना बंद ही था, 96 से बंद ही है। तो मैंने जो है बाबा को, मैंने कभी पुरुषार्थ नहीं किया इसके लिए, तो मैं 2017 के बाद 16 के बाद मैं निर्दोष दृष्टि रखनी शुरू की सबके लिए। पहले कभी कभी किसी के बारे में विचार चलता था, ये ऐसे करता है ऐसे करता है, नहीं कोई कैसे भी करता, मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, कोई मेरी कुछ भी इंसल्ट करे, गाली दे, कुछ भी करे, नीचा कुछ भी करे, मैं चिंता नहीं करूंगा, सबके प्रति सबका भला हो, निर्दोष दृष्टि, सबके प्रति निर्दोष दृष्टि रखूंगा। और 2019 में आते आते, अक्टूबर नवंबर में आते आते, मेरी आंखों में दर्द होना शुरू हो गया, चश्मा लगाओ दर्द हो, नहीं लगाओ तो ठीक लगे। तो फिर मैंने जाके आके चेक कराई, मैंने कभी क्या बात है कि चश्मा नंबर बढ़ गया शायद, क्या हुआ? तो वो कहता है डॉक्टर साहब आपका क्या किया आपने, मैं तो आपका तो आंखों का नंबर ही नहीं है। तो मैंने कहा नंबर नहीं है, तो मैंने कहा मैं चश्मा उतारूं। मैं चश्मा उतार दिया, अगले दिन उतारे तो लोग गली में जहां जाऊं कहें आपकी आंख आंख मुंह कैसे कैसे गंदा लग रहा है, चश्मा लगा के रखो। तो अभी मुसीबत हो गई। तो फिर मैंने जनवरी 15 को जब मेरा लौकिक लौकिक बर्थडे उसी दिन होता है, तो उस दिन मैंने चश्मा उतार दिया। अब 3.5 साल से ज्यादा समय हो गया लगभग ना, तब से मेरा 36 साल चश्मा लगाया मैंने, है ना। और अब 36 साल के बाद चश्मा उतर गया, 3.5 साल हो गए चश्मा उतरे, है ना। तो बाबा कैसे दृढ़ता के साथ कुछ भी फॉलो करोगे ना आप, उस नशे के साथ रहोगे, कोई स्पेशल योग का प्रयोग नहीं है, नियम मर्यादाओं के अंदर रहें, उस बाबा से प्यार रखें, सच्चाई सफाई से रहें, सच्ची दिल साफ दिल रखें, तो बाबा सचमुच में प्रैक्टिकली परिवर्तन करता है जीवन को सबके। दिल वालों को भी ऐसे होता है, 5वें दिन तो डांस करते हैं घंटा लोग, कैसे जो चल भी नहीं पाते। तो ये प्रैक्टिकल हम सब के लिए राजयोग, बाबा की याद, सच्ची दिल साफ दिल बना के रखो। सच्ची दिल माना जिसमें एक बाबा के सिवा कोई ना हो, साफ दिल माना आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, वो साफ दिल बच्चे ऐसे बन के रहेंगे। तो हमारे साथ बाबा सदा ही है, हमेशा है, सदा है, सर्व संबंधी है, सदा है, हर जगह है, कहीं भी हो आप वहीं पे। ओम शांति।
रहा ना आज गोल्डन, बिल्कुल डायमंड दिन रहा ना, बहुत बहुत गहरी प्रेरणा मिली, थैंक यू।